नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध अध्याय 7। शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदधि प्रेतम् ततः किमकरोद् विभुः। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राशैति प्रोक्ता ऋषीणां शत्रवर्धनः तस्मिन् स्वयाश्रमे व्यासो बदरी सन्दमन्विते आसीनोपस्पृश्य प्रणीदध्यौ मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यात् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रया यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे शाश्वत संहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापहा ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामाश निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच। स्वैर्निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः आत्मानं कस्य वा बृहति नेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। श्रुत उवाच। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाय पुरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः। अभ्यगान महदाख्यानम् नित्यं विष्णुजनप्रियः। बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास देव बैठे थे अपने आश्रम में और वे अपने विषय में चिंता कर रहे थे, मैं जीवों का हित नहीं कर सका, विश्व का उपकार नहीं कर सका, कौन ऐसा कार्य है जिसको करने से मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा चित्त प्रसन्न होगा। वे अपने आप पे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो उस अवस्था में नारद मुनि उनके गुरु महाराज वहां उपस्थित हुए, आकाश मार्ग से आ गए। तो श्री व्यास देव बड़ी श्रद्धा से भगवान नारद जी का स्वागत किए और अपने मनोव्यथा का कारण पूछे। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे मन में क्यों असंतोष है, मेरा मन अभाव का अनुभव कर रहा है। मैं जिस कार्य को करने के लिए जन्म लिया वह कार्य मैं नहीं कर सका, लेकिन वह कौन सा काम है मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा। तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सूर्य के समान जगत में हित करने के लिए घूमते रहते हैं और वायु के समान सबके भीतर भी आप प्रवेश करते हैं। जैसे वायु बाहर भी है और भीतर भी प्रवेश करता है, वैसे नारद मुनि समस्त प्राणियों के हृदय की बात जानते हैं, उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं। तो आप बताइए, भगवान व्यास देव कहते हैं कि आप बताइए मैं क्यों खिन्न हूं, मेरा मन बहुत उदास रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री नारद जी ने कहा कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का तो बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं, लेकिन भगवान वासुदेव की कृष्ण की महिमा का वर्णन आपने उस तरह से नहीं किया है। जब तक जीव भगवान के महत्व को, भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य को नहीं जानता है, तब तक वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो आप भगवान के कला अवतार हैं और आपने जीवों के हित के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान को आपने नहीं दिया जगत में, भगवान का वर्णन नहीं किया ठीक से, उनकी भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो आप एक ऐसा ग्रंथ प्रकाशित कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, उनकी कृपा का, उनके सौंदर्य का, उनके ऐश्वर्य का और उनके वैराग्य का, कीर्ति का, इस तरह से भगवान के अनंत गुण हैं। तो उन गुणों का जब आप वर्णन करेंगे तो उसे पढ़कर सुनकर जीव कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे और तब आपका परिश्रम सफल होगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जगत के जो भी जीव आपका वह ग्रंथ पढ़ेंगे वे सब सुखी हो जाएंगे। यह आदेश दिया भगवान नारद जी ने और अपनी कथा बता करके कि मैं किस तरह भगवान कृष्ण की कथा सुनकर, साधु संग करके और उनका उच्छिष्ट खाकर आज नारद मुनि बना। ये इतिहास सुनाकर और उन्हें भली भांति समझाकर प्रेरणा देकर नारद जी चले गए। यह कथा चूंकि नैमिषारण्य में हो रही है, शिव जी वक्ता है और श्रोताओं में प्रधान शौनक जी हैं। 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को अपना प्रतिनिधि बनाया था। जो कुछ भी पूछना है आप पूछेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि अगर एक साथ उंगली उठाने लगते हैं आई हैव क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल पड़ जाता शिव जी के लिए उत्तर देना, है ना। इसलिए उन्होंने शौनक जी को चुना था। शौनक जी उनमें सबसे बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति थे, भृगुवंशी ब्राह्मण थे और वास्तव में वही कुलपति थे, वाइस चांसलर वही थे उस सत्र के। एक बहुत बड़े पुरुष का, भगवान के कला अवतार का आदेश हुआ भगवान के एक दूसरे कला अवतार को कि आप भगवत गुण वर्णन प्रधान ग्रंथ का प्रकाशन कीजिए। सौनक जी को जिज्ञासा हो रही है कि नारद जी का प्रपोजल सुनने के बाद भगवान वेद व्यास देव ने किया या नहीं किया, इसलिए पूछते हैं। निर्गते नारदेशु ता भगवान बादरायण रहा श्रुतवा उस्तव भी प्रेतम ततः किम करो विभुः। भगवान बादरायण बदर कहते हैं बेर के फल को या वृक्ष को, बदर तो बदर उसी को बैर कहते हैं और बदर के समूह को बादर कहते हैं। अयन का अर्थ है घर आश्रम, बादर ही जिसका अयन हो निवास स्थान हो उसको बादरायण कहते हैं। बद्रिकाश्रम का नाम इसीलिए बद्रिकाश्रम है कि वहां बहुत बेर के पेड़ थे उस समय, जिस समय की कथा है, और बेर के वृक्षों के बीच में भगवान वेदव्यास देव का एक आश्रम था। उस आश्रम का नाम था शम्याप्राश, ऋषिनाम सत्रवर्धना, और वहां बहुत से ऋषि मुनि आते थे पढ़ने के लिए भगवान वेदव्यास देव से, क्योंकि भगवान के वांग्मय अवतार हैं व्यासदेव। तो समस्त विश्व के जिज्ञासु विद्यार्थी ऋषि मुनि सब आते थे वहां, निरंतर सत्र चलता रहता था। वर्धना शब्द का प्रयोग किया गया और वहां इस तरह से ये समर वोकेशन है तो ये है वह, ये सब नहीं होता था। कुछ दिन पढ़े और दो महीने खेलने के लिए व्यर्थ बिताने के लिए छुट्टी हो जाती। आध्यात्मिक जीवन में आनंद ही आनंद है। देखते हैं कि जो भी भगवान की भक्ति के कार्य हैं वो निरंतर चलते हैं लेकिन उसमें ऊब नहीं होती है, स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है लेकिन मंदिर बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसमें अब दो महीना अब समर वोकेशन दे दीजिए पुजारी लोग आराम करें, भगवान की पूजा चलती रहती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम वेद शास्त्र का पढ़ना भी सदा चलता रहता है। इसको कहते हैं नित्यम भागवत सेवा सप्तवर्धन। अभी मुझे स्मरण हो रहा है गुडाकेश प्रभु जी को देख करके तो हम लोग अफ्रीका की भूमि पर यही काम कर रहे थे जो आज यहाँ कर रहे थे। देशांतर हो गया, कालांतर भी हो गया, अप्रैल के बदले मई आ गया, लेकिन कार्यांतर नहीं हुआ। वही भागवत है, वही कृष्ण है, वही सुखदेव गोस्वामी, शिव गोस्वामी। यह वास्तव में भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी दया है हम लोगों पर, इस तरह की मति दिए हैं जिससे यह मति इसमें लग रही है। तो समुद्र पार जा करके यही भागवत पढ़ते हैं और लोग सुनते हैं। भगवान डांके बिहारी के शरण में नरोई में कथा हुई और यहाँ फिर विठलनाथ जी के शरण में कथा हो रही है। कथा उन्हीं की है चाहे जहां हो, उनके अतिरिक्त कथा का और कोई विषय नहीं। लेकिन जिस भागवत से हम लोग कथा कह रहे हैं सुन रहे हैं, उस भागवत के प्रकाशन के लिए नारद जी ने आदेश दिया भगवान को वेदव्यास देव को, तो उन्होंने क्या किया और यह रच करके उन्होंने किसको पढ़ाया, किसको दिया, इस विषय में प्रश्न है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। निर्गते नारदे, नारद जी के निर्गत हो जाने के बाद बद्रिकाश्रम से जब नारद जी हरि गुणगान करते हुए आकाश में उड़ गए चले गए, तो अपने गुरु महाराज के नारद जी के अभिप्राय को सुनकर भगवान बादरायण ने क्या किया। बादरायण शब्द भगवान वेदव्यास देव के एक गुण को प्रकट करता है। बेर वृक्षों के बीच में बने हुए आश्रम में रहकर भगवान वेदव्यास देव ने बहुत तप किया था, तो बादरायण शब्द उनकी तपस्या का सूचक है। आज थर्ड क्लास का भी कोई साधु होगा त्यागी तो उसका अपना बहुत सुंदर आश्रम है, एसी रूम है, और उस भगवान के अवतार की बात अब देखिए, जो बेर वृक्षों के बीच में रहकर तप किए, कोई घर नहीं था। यह आश्रम शब्द कुटिया वाचक नहीं है, ये आश्रम मतलब परिश्रम करने वाले, वृक्षों के नीचे ऋषि लोग रहते थे, लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम किया। यह भागवत किसी सिटी में नहीं लिखा गया था, ये बेर वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान वेदव्यास देव ने इसको प्रकाशित किया। या भगवान वेदव्यास देव और नारद जी किसी फर्स्ट क्लास के एसी रूम में बैठ करके कंसल्ट नहीं किए थे कि ये ग्रंथ रचा जाए। ये निगेटिव बातें नहीं कहनी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा ये स्वभाव है, मुझे याद आ जाती है सारी बात, ये कह देता हूँ। कितना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है श्रीमद् भागवतम, बेर वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान वेदव्यास देव ने इसको लिखा। तो बादरायण शब्द उनकी तपस्या का सूचक है, भगवान शब्द उनके अनंत ज्ञान का सूचक, और विभु शब्द लिखने में समर्थ, सब कुछ समझने में वे समर्थ हैं, यह सूचित कर रहा है। भगवान विभु बादरायण, इस ग्रंथ का जो रचयिता है भागवत का, वो है बादरायण, वह भगवान और विभु। और ऊपर से आदेश हुआ नारद जी का कि आप इसे प्रकाशित कीजिए। वास्तव में श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था, भगवान वेदव्यास देव का, लेकिन वे नहीं कर पाए थे, नारद जी के आदेश से उन्होंने किया। श्रुतवांश तद अभिप्रेतम, तद अभिप्रेतम तस्य अभिप्रेतम अभिप्रायम नारदस्य, नारद मुनि के अभिप्राय को सुनकर ततः किम अकरोत, उन्होंने क्या किया, तो सौनक जी इसका उत्तर देते, सूत जी उत्तर देते। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या त्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्र वर्धन। सरस्वती के पश्चिम तट पर भगवान वेदव्यास देव का आश्रम है, जिसे सम्या त्रास कहते हैं, वही बद्रिकाश्रम सम्या त्रास, बहुत सुंदर नाम है। इसका अर्थ है कि सरस्वती वहां से उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, पश्चिम तट पर भगवान का आश्रम। आश्रम हम लोग आज शब्द सुनेंगे तो शायद ऋषिकेश या हरिद्वार में बने हुए भारी भारी बिल्डिंग की कल्पना करेंगे कि आश्रम बना होगा। आश्रम का अर्थ है वह स्थान जहां सम्यक श्रम करता है जीव, आश्रम। आ का अर्थ है सम्यक कंप्लीट, और श्रम मतलब परिश्रम। भगवान को पाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ऋषि मुनि जब श्रम करते हैं तो उसको आश्रम कहते हैं। जीवन भर जीव को श्रम करना है भगवान के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम भी आश्रम है, जैसे वेद पढ़ने में परिश्रम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और गृहस्थ आश्रम तो आश्रम है ही, इसमें तो संदेह है ही नहीं। उसमें तो परिश्रम के अलावा और कुछ करना नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम भी आश्रम है, उसमें तप करना होता है, और संन्यास आश्रम में चित्त को एकाग्र रखना पड़ता, हमेशा भगवान में, इसको आश्रम कहते आश्रम। आजकल लोग समझते हैं कि कोई साधु आश्रम बना लिया तो वह आश्रम में सोएगा, आराम करेगा, उसका एक आश्रम हो गया। और कहते हैं किसी किसी साधु को, आप भी अपने एक आश्रम बना लीजिए। आश्रम का मतलब आराम, जहां से कोई आपको भगावे नहीं, एक अपना आश्रम बना लीजिए। यह अर्थ नहीं होता आश्रम का। तो सम्यक्त्रास नाम का आश्रम था सरस्वती के पश्चिम तट पर, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं ऋषिणाम सत्र वर्धन। वहां ऋषियों का सत्र नया नया कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कभी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या चलती थी, कहीं किसी पुराण की कथा चल रही है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। जो सत्र कहते हैं शेषम, जो सतत्य सतत चले उसको सत्र कहते हैं। निरंतर चलना चाहिए। यह श्रीमद भागवत सप्ताह भी एक सत्र है, तो 7 दिन के बाद उसकी समाप्ति नहीं होती है, फिर दूसरा डेट जुड़ जाता है, लिंक होता है उसका। ये सत्र है, ऋषियों का सत्र है। भगवान को समझना है, परम सत्य को समझना है और उनसे प्रेम सीखना है। हिमालय में बद्रिकाश्रम में ऋषियों के सत्र चलते रहते हैं, भगवान वेदव्यास देव के आश्रय। तो तस्मिन स्व आश्रमे, उसी अपने आश्रम में, मतलब उस स्थान पर बद्री चंद मंडित है, जो आश्रम जो स्थान बेर वृक्षों के मूल शाखाओं से मंडित था, बड़े गोल गोल लंबे लंबे मूल शाखा स्तंभ वहां दिखाई देते, इसको बद्री चंद कहते हैं। संड का होता है वृक्ष की मूल शाखा, जो धरती से ऊपर होती है और जहां से अनेक शाखाएं फैलती हैं, उससे पहले और धरती से ऊपर के भाग को संड कहते हैं। बदरी संड मंडित है, बेर वृक्षों के मूल शाखाओं से सुशोभित था वह स्थान। वहां वे बैठे थे आसीन अपह उपस्पृश्य, भगवान ने स्नान किया और स्नान करने के बाद वे तिलक किए, तिलक करके आचमन करके और बैठे। कब की बात है, जब नारद जी चले गए तब। तो नारद जी के जाने के बाद नारद जी की आज्ञाओं पर, आदेशों पर भगवान वेदव्यास देव ने अपने मन को स्थिर किया। प्रणिबद्ध मन स्वयं, यह स्वयं का अर्थ है कि अब नारद जी के इंस्ट्रक्शन के बाद अब भगवान वेदव्यास देव का कोई शिष्य फिष्य अब सामने नहीं आ सकता था। अब उनको अपने मन को एकाग्र करके भगवान की लीला ग्रंथ को प्रकाशित करना था। कभी शिष्य लोग ही बहुत डिस्टर्ब करते हैं, शिष्यों से बहुत भारी डिस्टर्ब होता है वास्तव में, समझना चाहिए। इसलिए है स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। शिष्य हो चाहे कोई हो, कुछ ऐसा समय होना चाहिए जबकि मन आदमी भगवान में रख सके, चिंतन कर सके, प्रेम करे या कुछ लिख सके। ये नहीं कि सब समय कोई ना कोई मिलता रहे तो मन एकाग्र हो नहीं पाता है। भगवान वेदव्यास देव के आश्रम में उस स्थान पर बहुत ऋषि थे, लेकिन उन्होंने एकांत में अपने मन को स्थिर किया। प्रणिदभ्य का अर्थ है स्थिर चकार, स्थिर किया मन को स्थिर कर। भाग रहा था क्या, स्थिर करने का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से लगाना, यह स्थिर करना। भगवान वेदव्यास देव ने जो प्रवचन किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि समाधि नाम स्मर्तक विचष्ट कर, तद विचेष्टितम कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण की लीलाओं को समाधिना अनुस्मर, एकाग्र मन से आप उस पर विचार कीजिए, बिखरे हुए मन से नहीं। इसका अर्थ यह है कि भागवत लिखते समय आपका और कोई कार्य नहीं रहना चाहिए, आपका मन कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आप इस तरह एकाग्र मन से समाधि में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे तब आप ठीक ठीक लिख सकेंगे। और कहते भी हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास देव की समाधि की भाषा है। पूर्ण समाधिस्थ होकर भगवान की लीला को देख देख कर इन्होंने लिखा, बिल्कुल क्लियर साक्षात्कार कर। मनोमय कल्पना करके नहीं, उनके मन में भगवान उदित होते थे। और इस विशेष शब्द का नारद जी ने प्रयोग किया था, समाधि न अनुस्मर तब विचेष्टितम। ये साक्षात आदेश परक वाक्य, आप अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मनन कीजिए। तो इस तरह भगवान वेदव्यास देव अपने मन को स्थिर किए। ये प्रश्न होगा कि मन कैसे स्थिर हो गया, कल चाहते ही हो गया, तो नहीं, भक्ति योगे न, भक्ति योग से मन भगवान में स्थिर हो गया, लग गया। भक्ति योगे न मन से सम्यक प्राण हिते अमले अपश्य पुरुषम पूर्णम मायाम च तदकाशयम। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के नाम का जप करना, उनको प्रणाम करना और उनके समक्ष अर्पित करना। नौ प्रकार की भक्ति है, इसको कहते हैं भक्ति योग। तो भगवान वेदव्यास देव जो कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किए, तो उस तरह से वे कृष्ण पर चिंतन नहीं किए जैसे आजकल के शोधकर्ता लोग कभी कभी कृष्ण पर सोचा करते हैं कि कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष है कि नहीं, जरा शोध करो, रिसर्च स्कॉलर। आजकल के लड़के जैसे स्कूल कॉलेज में कुछ प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने में उस वस्तु के गुण दोष से उनका कोई संबंध नहीं होता है, वो अंक प्राप्त करने के लिए, पास होने के लिए लिखते हैं। लेकिन भगवान वेदव्यास देव ने जो भगवान का चिंतन किया, तो भक्ति योग्य नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम से स्नेह से भगवान को समर्पण किए, उनकी याद करना प्रारंभ किए, इस भाव से कि मैं एक हीन व्यक्ति हूँ, भगवान महान है, तो हमारे हृदय में उदित हो, अपनी लीला अपना गुण वे प्रकट करें जिससे मैं उसको लिपिबद्ध कर सकूं, इसको कहते हैं भक्ति योग। यह भक्ति योग हृदय में उदित होते ही उनका मन प्रणिहित हो गया, प्रकर्षण निहित, एक वस्तु में भगवान कृष्ण में निहित हो गए, लग गए। और जब भगवान में मन लग गया तो वह निर्मल हो गया, अमल मल शून्य मनसी। भगवान का ध्यान करने से वेदव्यास देव का चित्त बिना मल के हो गया। यह प्रश्न होगा कि भगवान वेदव्यास देव के मन में क्या मल था, और कुछ नहीं, चांचल्यम, चंचलता ही मल। ये सोच रहे थे ये लिखना है, वो करना है, ये करना है, बहुत बहुत जगत को सिखाना है, ये कार्य है, वो कार्य है, ये मन की चंचलता ही मल है। मनसः चांचल्यम ही मलम, तो मन बिल्कुल स्थिर हो गया और भगवान के अतिरिक्त वो कहीं नहीं जा रहा था। यदि किसी व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण के अलावा और जगह जा रहा है तो उसका मन समल है, क्योंकि अन्यत्र जाने का कारण क्या है, कामना। कामना मन को धक्का देकर के दूसरी वस्तु के पास मन को भेज देती है। यदि हृदय में कामना नहीं है तो मन जा नहीं सकता है, और जब मन जाता है कहीं तो पीछे से इंद्रियां, वाणी, शरीर सब उसके पीछे हो जाते। जैसी कामना होती है वैसा ही मन धावित होता है, और जहां मन धावित होता है तो वहीं सब शरीर भी चला जाता है। तो आप लोगों के मन में भागवत सुनने की कामना हुई तो उस कामना ने मन को प्रेरित किया और मन इस शरीर को भी ला दिया अपने अपने घर से निकाल कर, है ना। यदि मन इस तरह भगवान की कथा में नहीं रहता आता तो आपके शरीर को आपके ऑफिस से हटाता ना कठिन था, तो अपने ऑफिस में या अपने घर में या तथा कथित अपने किसी स्थान में शरीर भी रह जाए। आप देख सकते हैं, ये सबका अनुभव है, कामना ही मनुष्य को इधर से उधर ले जाती है। ये मनुष्य को ही नहीं, किसी भी जीव को कामना प्रेरित करती है, ये चाहिए वो चाहिए तो इधर से उधर प्रेरित करती है। भगवान वेदव्यास देव के मन से कामना चली गई, केवल कृष्ण काम रह गए। ऐसे निर्मल हृदय में मन से मन में अपश्यत उन्होंने देखा, मन में भगवान को उन्होंने देखा, पूर्णम पुरुषम पूर्ण पुरुष को देखा। यह पूर्ण पुरुष का अर्थ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्णम पुरुषम। आजकल लोग किसी आदमी के भी नाम में लिख देते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष ही नहीं पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्णतम नराधम को भी ऐसा वो कह देते हैं। पुरुष कहते हैं भगवान को, क्योंकि वे सबके हृदय में शयन करते हैं, पुरी में शयन करते हैं, ब्रह्मांड में शयन करते हैं, प्रकृति के अंतर्जामी है, ब्रह्मांड के अंतर्जामी है, जीव के अंतर्जामी है, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अंतर्जामी जो सबके भीतर है, और दूसरा पुरुष का अर्थ होता है पूर्ण, जो सब विषय में कंप्लीट है, उसको पुरुष कहते हैं। सब विषय में वह पूर्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण सब विषयों में परिपूर्ण है। और अंतर्यामी का मुख्य अर्थ होता है मालिक, कंट्रोलर। तो भगवान श्री कृष्ण सब वैभव से पूर्ण है, इसके साथ ही साथ सब कुछ के ईश्वर, मालिक, स्वामी, ये दोनों अर्थ हैं। तो ऐसे पूर्ण पुरुष को वेदव्यास देव ने अपश्य देखा मन से, और इसके साथ ही साथ उन्होंने भगवान के अधीन रहने वाली माया को भी देखा। माया च तद अपाश्रयाम, ईश्वर के अधीन रहने वाली, भगवान के अधीन रहने वाली माया को भी उन्होंने देखा, सत्कार किया, भगवान को देखा और भगवान की माया को देखा। माया की विशेषता बता रहे कि जया सम्मोहितो जीव, जिस माया से स्वरूप विस्मृत जीव, जिस माया के प्रभाव से सम्मोहित स्वरूप तिरोधान भूत जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं मन होते हैं, अपने को शरीर मानने लगता है। भगवान वेदव्यास देव ने माया का यह प्रभाव देखा कि माया समस्त जीवों को सम्मोहित की है। सम्मोह, मोह का अर्थ है भ्रम, और उसी माया से मोहित होकर के जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते, अपने को त्रिगुणात्मक मानता है। यह शरीर तीन गुणों से रचा गया है, इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक कहते हैं। आत्मा मैंने कारण, त्रिगुण ही जिसके कारण है उसको त्रिगुणात्मक कहते, तीन गुणों से बना हुआ है यह शरीर। तो जो जीव इससे परे है, त्रिगुणात्मक नहीं है, चिन्मय है, स्प्रिट है, वह जीव माया के प्रभाव से अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है। परायति मनुते त्रिगुणात्मकम आत्मान, परायति त्रिगुण व्यतिरिक्त अपि, इस शरीर से भिन्न होने पर भी जीव अपने को शरीर मानता है। यह माया का सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा जादू, सम्मोहन। सारे विश्व में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने को देह न मानता है, और एक शक्ति का जादू सर दुनिया पर, सम्मोहन कहते हैं, भ्रम।
और भगवान वेदव्यास देव अपने मन में ये देख रहे हैं किस तरह से माया जीवों को बाध्य कर दी है देह में आत्मबुद्धि करने के लिए। तब उन्होंने विचार किया कि जीव का यह अनर्थ कैसे जाएगा, तो इसको भी उन्होंने देखा। अनर्थों पर समन साक्षात भक्ति योग अधोक्षज, उन्होंने देखा कि अधोक्षज में जो डायरेक्ट भक्ति योग है, प्रेम है, वही है अनर्थ का उपशमन। भगवान की भक्ति से ही जीव का यह अनर्थ जाएगा, तो उन्होंने देखा। तब अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इस सात्वत संहिता की रचना की है। जिस सात्वत संहिता को या भगवत भक्ति को लोक नहीं जानता है, लोकस्य अजानतः, अज्ञानी लोक के लिए भगवान वेदव्यास देव ने सात्वत संहिता चक्र, सात्वत संहिता मतलब भागवत संहिता का प्रकाशन किए, निर्माण किए। श्रीमद् भागवत को संहिता कहते हैं। सम का अर्थ है कंप्लीट और हित का अर्थ है हित, कल्याण, जिसके द्वारा बहुत अच्छी तरह से जीव का हित किया जाता है, उसको संहिता कहते हैं, संहिता। और भगवान ब्रह्मा जी ने भी एक अपनी संहिता लिखी है जिसको ब्रह्म संहिता कहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण का वर्णन किया। और यह है सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम। सात्वत का अर्थ है भगवान कृष्ण के भक्त, यह भक्तों का विशेष रूप से हितकारक, इसलिए इसको सात्वत संहिता कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ लोकस्य अजानतो, भगवान वेदव्यास देव ने अज्ञानी लोक के लिए इस भागवत का निर्माण किया, इससे जीव का हित होगा। किस तरह से हित होगा इस भागवत के द्वारा, तो कहते हैं सुनने से। दस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः श्लोक महाभया। जिसे सात्वत संहिता के भागवत के श्रूयमाणायां, तो सुनना चालू करने पर भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। केवल श्रूयमाणायां, अभी मनुष्य सुनना चालू करता है, कुछ अध्याय कुछ प्रसंग सुनता है तभी, किम पुनः श्रुताया। सुधा स्वामी कहते हैं फिर पूरा सुन ले तो कहना ही क्या। श्रूयमाणायां का अर्थ है कि अभी क्रिया चल रही है, पूरा नहीं सुना है, अभी अधूरा सुना है। तो अधूरा भी कोई भागवत को सुने तो भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। भक्ति शोक मोह भय का नाश कर देती है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इन तीन श्लोकों में श्रीमद् भागवत के समस्त विषय का संक्षेप में वर्णन किया गया है इनडायरेक्टली। श्रीमद् भागवतम ने यही विषय वर्णित, क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी माया, माया से जीव का अनर्थ, और अनर्थ कैसे दूर होगा भक्ति योग से, भक्ति योग कैसे उत्पन्न होगी भागवत सुनने से, बस यही सार। प्रेम स्वरूप है भगवान में। तो इस तरह से भगवान वेदव्यास देव ने देखा। सब जगह अपश्यप लगाना पड़ेगा। भगवान वेदव्यास देव ने पूर्णम पुरुषम अपश्यप, मायाम च अपश्यप, और जीव मोहित हो गया यह भी अपश्यप। जीव अपने को त्रिगुणात्मक देह मानता है यह भी अपश्यप, और इससे उसका अनर्थ होता है ये भी उन्होंने देखा। अनर्थ का उपशमन भक्ति से होगा ये भी देखा। और सब देख करके तब तो संहिता दी है कंप्लीट, सब कुछ देखने के बाद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो श्रीमद् भागवत की रचना लोकस्य अजानतः, जो जीव नहीं जानता है भगवान को और अनर्थ भोग रहा है उसके अनर्थ का उपशमन करने के लिए उत्पन्न हुआ, इसको रचा गया। और शुद्ध गोस्वामी कहते हैं जस्याम श्रीमाणा है, भगवान वेदव्यास देव ने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया, इसकी रचना किया, तो यही मनोरथ ले करके कि सब लोग इसको सुनेंगे और उससे उनका अनर्थ उपशमित होगा। यह माया भगवान की आश्रित है, उपाश्रय अधीन है माया, और माया के अधीन सभी जीव है, यह स्थिति है। तद अपाश्रय सिद्ध स्वामी जी लिख रहे हैं तद अधीना, भगवान कृष्ण के अधीन है माया, और जया सम्मोहित और माया के अधीन सभी जीव है। तो अब बताइए कि कोई माया अधीन जीव कहे कि हम भगवान हैं, या उसको कोई लिख दे कि ये पुरुषोत्तम है या पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो विद्वानों की दृष्टि में केवल हास्य की अपेक्षा और उसका कोई लाभ नहीं है ना, हास्य केवल। ऐसे तो नाटक में हम लोग देखते हैं, नाटक ही नहीं बच्चों के खेल में भी, बच्चे कभी चोर का खेल खेलते हैं और शाह का खेल खेलते हैं, साहूकार राजा, चोर और राजा का हम लोग बहुत बार खेल चुके हैं। तो अब वो राजा बना हुआ व्यक्ति यह मान ले कि मैं राजा हूं तो कितना बड़ा भ्रम है उसका। अरे मैं एक खेल देखा हूं, बच्चे ऐसे गोलाकार बैठते हैं, गोलाकार ऐसे बैठते हैं और एक बच्चा उनके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है बाहर से, और उनके पीछे छोटा सा गमछा या पेपर कुछ रख देता है, केवल जिस बच्चे को पता न चले कि मेरे पीछे रखा गया है तो उसको चोर कहते हैं कि ये चुराया है, उसको चुराया है, और जिसने रखा है वो राजा बन जाता है और पकड़ता है चोर को और उसे बनावटी घूसा मारता है जिससे उसे चोट न लगे, लेकिन लोग देखेंगे चोर को दंडित किया जा रहा है, और उतने से ही वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारे जीव माया के अधीन हैं, लेकिन इसी में से अगर किसी को दो चार हजार या दो चार लाख दूसरे जीव कहने लगे कि तुम भगवान हो भगवान हो भगवान हो भगवान हो, बस वो भी चुपचाप सुनने लगता है कि ठीक ही तो कह रहे हैं, गलत क्या कहूं कभी कभी गुरु लोग कहते हैं हमारे हमारे चेले हमारे विषय में ऐसा कहते हैं, हम ऐसा नहीं मानते, तुम चेलों की बात के अनुसार चलोगे, उन्हीं का प्रचार होना चाहिए कि तुम्हारा प्रचार होना चाहिए, तुम जो कहते हो उसका प्रचार होना चाहिए ना। इस तरह से अनर्थ हो रहा है वास्तव में। सबसे पहले वेदव्यास देव ने भगवान को देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं ही भगवान, उन्होंने अपने मन में भगवान को देखा। सत्य कोई रियलाइजेशन करता है तो इस तरह से देखता है, मैं एक जीव हूं और भगवान हमारे स्वामी और पूर्णम सब तरह से कंप्लीट, यही भगवान की विशेषता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सब तरह से पूर्ण है। और जीव का पहला लक्षण है कि सब तरह से अपूर्ण है। कोई कह सकता है कि मैं पूर्ण हूं, सब कुछ मेरे पास है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति दवा की अपेक्षा रखता है, भोजन की अपेक्षा रखता है, उसके लिए घर चाहिए, उसके लिए स्वजन चाहिए, कभी कभी काम नहीं कर रहा है।
तो पूर्ण शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए दिया जा रहा है, पूर्ण पुरुष, इसको उन्होंने देखा। और पूर्ण पुरुष की जो माया है वो जीव को देह में आत्ममति अभिमति जन्मा रही है, और इस कारण से परह अपि जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं मन्यते और तत्कृतम अनर्थम च अभिपद्यते। तत्कृतम अनर्थम, देहात्म बुद्धि से उत्पन्न किया हुआ अनर्थ जीव भोग रहा है। तो अनर्थ क्या है? अनर्थ है अर्थ का विरोधी। अनर्थ शब्द अर्थ का विरोधी है, अनर्थ भोग रहे हैं। यहां हम लोग बिना पढ़े लिखे लोग भी अर्थ का अर्थ समझते हैं। अर्थ का अर्थ है सुख, सुख सही चाहते हैं, इसलिए सुख है यही अर्थ है। परंतु जीव सुख न प्राप्त करके दुख प्राप्त करता है, यह है अनर्थ। और यह अनर्थ कहां से प्रारंभ हुआ? प्रारंभ हुआ देह को मैं मानने से, और जीव को कोई दुख नहीं है। तत्कृतम अनर्थम च अभिपद्यते, देह को मैं मान लिया है इसीलिए दुख है। और देह से आत्ममति हटाई हटेगी और आत्मा में आत्ममति होगी तब दुख मिटेगा। तो जीव है भगवान कृष्ण का नित्य दास, यह उसका आत्मस्वरूप है, इसमें आए बिना जीव का दुख नहीं मिट सकता। तो श्रीमद् भागवत में कथाएं तो आती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे दार्शनिक शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझ करके चलना चाहिए। तत्कृतम अनर्थम च अभिपद्यते, तत्कृतम, कृत शब्द सिद्ध कर रहा है कि कोई कारण है इस अनर्थ का। वो क्या है? जीव का अपने को देह मानना, यही कारण है दुख का। अच्छा, तो अनर्थ का उपशम कैसे होगा? भगवान वेदव्यास देव ने इसको देखा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परीक्षा हो रही थी धर्म की। वहाँ धर्म का मतलब धर्म नाम का पेपर आता है, विषय होता है। धर्म मतलब भगवान की भक्ति आदि वो लोग नहीं समझते हैं। एक सब्जेक्ट होता है धर्म, और उसकी परीक्षा चल रही थी, और कुछ लड़के फिर भी कुछ नकल कर रहे थे चोरी से। एक प्रोफेसर ने कहा, देखना भाई धर्म की परीक्षा है, अधर्म न होने पाए। धर्म का पेपर चल रहा था। तो उसी तरह से मैं अनर्थ के विषय में बोल रहा हूँ, अर्थ के विषय में फिर भी आप लोग निद्रा रूपी अनर्थ में जा रहे हैं। प्रकट अनर्थ देख रहा हूँ, क्योंकि आपका अर्थ है भागवत सुनना, आए हैं यहाँ तो, लेकिन भागवत सुनने में निद्रा बाधक है, तो ये अनर्थ में जा रहे हैं। ये अर्थ हाथ नहीं लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन कर रहे हैं सुत गोस्वामी कि भागवत का निर्माण किया गया अनर्थ का शमन करने के लिए। अनर्थोपशमन साक्षात भक्ति योगम अभोक्षज। जीव सुख चाहता है ना? कोई ऐसा जीव है जो दुख चाहता है? कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। और सुख में तो चाहते हैं कि हम हमारा सुख कभी नष्ट ना हो, नाश को न प्राप्त हो, इसको अनंत सुख कहते हैं। और सुख में कोई दुख न मिला हो, दुख मिश्रित है, सुख कोई नहीं चाहता, खाटी सुख चाहते हैं सब लोग, केवल सुख। लेकिन संसार में सुख प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए जो भी कार्य है वो दुख से मिश्रित। घर गृहस्थी सुख है कुछ लोगों के लिए, लेकिन घर गृहस्थी चलाने में बहुत परिश्रम होता है, ये अनेक दुख से भरा हुआ है, इसमें सुख नहीं। इसी तरह से कोई भी संसार का कार्य है वो दुख से मिला हुआ है। पढ़ाई लिखाई है, इसके द्वारा नौकरी मिलती है, व्यापार आदमी करता है, लेकिन पढ़ना लिखना खुद एक दुख है कि नहीं? ये कोई आनंद की चीज नहीं है, और खास करके जिसकी जिसका एग्जाम चलता है वो जरूर फील करता होगा कि ये तो दुख है, तो क्या करे, पढ़ना ही करना है। तो कहीं यात्रा करते हैं, यह सुख है कि तेज गति से हम जा रहे हैं, लेकिन दुख है उसी में, गर्मी का मौसम चल रहा है, दुख से सना हुआ सब कुछ, बहुत बहुत दुख है। एसी में चलने वाले लोग, हवाई जहाज से चलने वाले लोग आराम से चलते हैं, लेकिन उनको दुख होता है कि इतना ज्यादा पैसा हमारा लग गया, मन में कभी कभी सोच करके बहुत दुखी होते हैं। दुख से सना हुआ, लेकिन जो कुछ भी हो हमारा उद्देश्य है अर्थ है, लेकिन इस जगत में अर्थ मिल नहीं रहा है, शुद्ध सुख सुख नहीं मिल रहा है, इसको अनर्थ कहते हैं। तो पहले तो जीव को ये पता लगना चाहिए कि वास्तव में मैं अनर्थ में हूँ, वास्तव में मैं दुख में हूँ, पहली बात है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा कि मैं दुख में हूँ, तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेगा, है ना? वो कभी प्रयास नहीं करेगा। मान लीजिए जो व्यक्ति हजारों प्रकार के रोग से ग्रस्त है, लेकिन वह अनुभव करे कि मुझे कोई रोग नहीं, तो फिर वो रोग से मुक्त होने का उपाय भी नहीं करेगा, आसमय में मर जाएगा। रोग का अनुभव होता है तब व्यक्ति वैद्य के पास, डॉक्टर के पास पहुंचता है ना? जब पता लगता है अपने आप धीरे धीरे कि अब मुझे रोग हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, और डॉक्टर उसके रोग को दूर करने का उपाय बताता है या करता है। तो इस तरह से हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर में दुख का साक्षात्कार करना आवश्यक, वास्तव में दुख है। भगवान बुद्ध देव ने कहा है कि संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं दुखालयम, दुखा नाम आलयम, आ माने सम्यक, और लय का अर्थ होता है जहां कोई वस्तु छिपा करके सुरक्षित रखी जाए, सजा करके, उसको लय कहते हैं, उसे प्रलय कहा जाता है। लय किसी वस्तु को जो आप कहीं छिपा करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो उसको आलय कहते हैं। जैसे अपने घर में हम रहते हैं, रात को किवाड़ बंद करके सो जाते हैं, तो इसीलिए उसको आलय कहते हैं, उसमें हमारा लय हो गया, पता ही नहीं लगता है, हम चुपचाप उसमें सोते हैं, इसीलिए उसको आलय कहते हैं। तो जितने प्रकार के दुख संभव है, जितने प्रकार के दुख दैहिक भौतिक और अधिदैविक, वे सारे दुख सीरियल नंबर से सजा सजा कर भगवान ने सब रखा। एक एक प्रकार भोगने में तो कई कई शरीर लेना पड़ेगा, और तीनों प्रकार के दुख एक एक समय में आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा किसी आदमी को बुखार है तो गर्मी का महीना भी चढ़ा हुआ है, ताप बहुत बढ़ गया है ना? या जाड़े में कोई कष्ट है तो जाड़ा भी बहुत बढ़ा हुआ, अनावृष्टि हो जाती है, तब तो उधर गरीबी दबोच देती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, चारों तरफ से दुख लगा हुआ। और दुख है का मूल कारण है कि शरीर को हम मैं माने हैं, नहीं तो दुख नहीं है। यदि शरीर से आत्म भावना निकल जाए तो इन सारे दुखों का संबंध शरीर से है, शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, इसीलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है, इसको अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थों का संबंध साक्षात भक्ति योगम अभक्षण, और दुख है का मूल कारण है कि शरीर को हम मैं माने हैं, नहीं तो दुख नहीं है। यदि शरीर से आत्मभावना निकल जाए तो इन सारे दुखों का संबंध शरीर से है। शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, इसलिए हमें दुख भोगना पड़ रहा है, इसको अनर्थ कहते हैं। तो अनर्थों का संबंध साक्षात भक्ति योगम अभक्ष। भगवान वेदव्यास देव ने विचार किया कि जीवों का अनर्थ कैसे दूर होगा, तो उन्होंने यह भी देखा समाधि में कि अभक्षदे भक्ति योगम साक्षात अनर्थ उपशमम,
अथवा भक्ति योग के लिए भी साक्षात शब्द लगेगा। अभोक्ष जो इंद्रियों से अतीत हैं, विष्णु हैं, भगवान हैं, उनमें भक्ति योग साक्षात अनर्थ का उपशमन कर देता है। साक्षात का अर्थ है कि और बिना किसी की सहायता के, भक्ति योग कंप्लीट है, समर्थ है। ऐसा नहीं कि उसके साथ और ज्ञान तप योग आदि जोड़ना पड़ेगा, तो साक्षात कहते केवल भक्ति योग से जीवों का सारा दुख दूर हो जाएगा, केवल भक्ति योग। इसको कहते हैं साक्षात अनर्थ उपशम, अथवा साक्षात भक्ति योगम का अर्थ है कि केवल भगवान की भक्ति से। उधर साक्षात का अर्थ अनर्थ उपशमन में कि पूरा अनर्थ का नाश हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता भगवान की भक्ति करने से। लेकिन भक्ति जीवों में, उन्होंने देखा कि जीवों में भक्ति है नहीं, तो भक्ति योग के विषय में जो अनभिज्ञ हो, लोकस्य अजानता, जो भक्ति योग नहीं जानते हैं, उनमें भक्ति उत्पन्न करने के लिए भगवान वेदव्यास देव ने शास्त्रोक्त शास्त्र का प्रवचन किया, इसका प्रकाशन किया। आप समझ गए कि भागवत का सार क्या है। अभोक्षज ने भक्ति उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन किया है। तो आज कोई भागवत का प्रवचन करे या टीका लिखे और भक्ति ही उसका उद्देश्य न हो, भक्ति सरार्थ न हो, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भागवत जानता नहीं। भागवत का प्रकाशन किया गया अभोक्षज ने भक्ति उत्पन्न करने के लिए। तो अभोक्षज अर्थ है भगवान श्रीहरि के लिए, कृष्ण के लिए रिजर्व अर्थ है, मतलब अन्य देवताओं का बायकॉट करता है इसमें। अधोक्षज दूसरे लोग नहीं है, भगवान विष्णु के अलावा कोई अधोक्षज नहीं। अध अक्षजम जस्मात् स अधोक्षज, अक्षज का अर्थ है इंद्रियों का, अक्षों का अनुभव, हमारे आंख का अनुभव, कान का अनुभव, मन का अनुभव हमेशा जिससे नीचे रह जाए, मतलब जो मन के अनुभव से, वाणी के अनुभव से, नेत्र के अनुभव से जो सदा परे है, उसको अधोक्षज कहते हैं। ये देवता आदि जो है हमारे इंद्रियों के विषय है, देवताओं को देखा जा सकता है, वह भोक्षज नहीं है। उनका शरीर प्राकृत है, भले सत्वगुण प्रधान है लेकिन प्राकृत है, उनका लोक भी प्राकृत है। अभी तो केवल 5000 वर्ष पहले सभी देवता आते रहते थे इस पृथ्वी पर, हम लोगों से उनका शरीर सुपीरियर है लेकिन त्रिगुणात्मक है वो भी, अधोक्षज नहीं है। इन भगवान विष्णु का पीताम्बर, उनका जूता, उनका रथ, उनका देह, जो कुछ भी है सब चिन्मय है, इंद्रियातीत, जड़ नहीं है। इसलिए हमारे इंद्रियों का अनुभव जड़ है और जड़ अनुभव से युक्त इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। अधोक्षज का अर्थ है कि जिनका सब कुछ अप्राकृत है, जिनकी लीला अप्राकृत है, जिनका धाम अप्राकृत है, जिनका नाम अप्राकृत है, जिनके परिकर अप्राकृत है, सब कुछ जिनका माया से परे है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, उनको अधोक्षज कहते हैं। और हम जितने भी जीव इस जगत में जन्म लिए हैं सबका अनुभव केवल मायिक वस्तुओं तक जा सकता है। माया से परे स्पिरिचुअल पदार्थों को हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती, इसलिए और शब्द न दे करके यहां अभोक्षण शब्द दिया गया है। अभोक्षण में भक्ति उत्पन्न जब होती है तब अनर्थ का नाश होता है, मतलब भगवान में। ऐसा नहीं कि भागवत पढ़ करके और किसी भी देवता के भक्त हो गए और कहते हम तो भागवत पढ़ते रहते हैं। क्या भागवत पढ़ते रहते हो, शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आया क्या भागवत कह रहा है। अधोक्षर में भक्ति उत्पन्न करने के लिए भागवत का निर्माण किया गया, लोक के लिए अजानतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और जगव्यास देव के लिए विद्वान, दोनों जस्ट विपरीत शब्द, एक जानकार है और एक अजानतः। एक ही श्लोक में विश्व के समस्त प्राणी इसको नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान वेदव्यास देव जानते हैं। क्या जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में भक्ति योग ही समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है, इसको जानने वाला विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है जानकार, जो जानता है उसको विद्वान कहते हैं। लोक के लिए अजानतः शब्द दे रहे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं वास्तव में सब बुद्धिहीन है, वो जानते नहीं, भगवान वेदव्यास देव जानते हैं। तो जानने वाले विद्वान के द्वारा नहीं जानने वालों को जनाने के लिए भागवत का निर्माण किया गया, विद्वान ने किया चक्र क्या सातोत्संहिता किसके लिए अजानता है लोकस्य अर्थ नहीं जानने वाले लोगों के लिए किया, इसकी आवश्यकता है। आजकल हम लोग विद्यालय बनाते हैं और सब चीज बनाते हैं तो जानते हैं कि विद्यालय इसलिए बनाया गया है कुछ लोग पढ़े नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि विद्यालय बनाना एक फैशन है बस बना दो, कुछ अज्ञ जीव हैं जिनको पढ़ाना लिखाना है उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय बनाया जाता है, लेकिन पढ़ाने वाले जो हैं उनको अवश्य पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दो बच्चों को लाकर स्कूल में डाल दिया और एक को पढ़ाने वाला बना दिया कि तुम पढ़ाओ, क्या पढ़ाएगा। अज्ञ व्यक्ति भागवत को नहीं कह सकता है, उसे जानकार होना चाहिए तब वह अज्ञ लोगों के अज्ञान को नष्ट करेगा। लेकिन आजकल जो भागवत हो रहा है प्रायः बच्चा क्लास में आज भर्ती हुए हैं उसी में से एक बच्चा बोलना चालू करे जैसे विद्यालय में, ये हालत, वो खुद नहीं जानता है और वो बोलेगा तो और क्या जानेंगे। इसलिए पढ़ने वाले लड़कों की अपेक्षा पढ़ाने वाले की ज्यादा छानबीन की जाती है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है, जल्दी बहाली नहीं मिलती है। लेकिन पढ़ने के लिए तो बच्चा क्लास में किसी का भी एडमिशन हो जाएगा, दाखिल कर दो कोई बात नहीं। एक श्लोक में विद्वान शब्द है और उसके साथ ही साथ अजानत परम विद्वान भगवत लीला के मर्मज्ञ भक्ति योग में अभिज्ञ वेदव्यास देव ने भक्ति योगान अभिज्ञ जीवों के लिए भागवत का निर्माण किया। भक्ति का प्रभाव नहीं जानते, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो सातोत् संहिता का निर्माण उन्होंने क्यों किया, जीवों का उपशमन अनर्थ उपशमन के लिए। अनर्थ उपशम कैसे होगा, भक्ति से। भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, भागवत से। तो क्या प्रकार होगा भक्ति उत्पन्न करने के लिए, क्या भागवत को पेरेंगे कहीं मशीन में तब भक्ति उत्पन्न होगी कि छुएंगे कि परिक्रमा करेंगे। कहीं कहीं मैं देखा हूँ भागवत सप्ताह में लोग सुनने नहीं आते हैं, भागवत खत्म होते ही परिक्रमा लगाना चालू करते हैं। कई स्त्रियां ऐसे आती हैं भागवत सप्ताह में नहीं बैठती हैं, लेकिन भागवत की परिक्रमा खूब 108 बार 10 बार करके उसी का भक्ति उत्पन्न होगी। तो भागवत से भक्ति उत्पन्न होगी, पर क्या करने से? जस्या वही श्रूय माना है, सुनने से, सुनने से भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी। जस्या वही श्रूय माना यहां भक्ति उत्पन्न होते, भागवत जब ही सुनना प्रारंभ करते हैं उसी समय भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी समय भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो भक्ति अभी प्रारंभिक भक्ति भी शोक मोह भय को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ होती है, प्रेम स्वरूप भक्ति तो क्या कर देगी, वो तो कहना ही नहीं, वो तो भगवान को वश में करेगी, भगवान को ला देगी। लेकिन सामान्य भक्ति अभी उत्पन्न होगी वो भी शोक मोह भय को नष्ट कर देती है, तो सुनने से भक्ति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि भगवान वेदव्यास देव या भागवत रच करके आकांक्षा किए कि सभी इसका श्रवण करें। हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हम लोग भगवान वेदव्यास देव की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, है ना? उन्होंने जो चाहा, यदि उनकी इच्छा पूरी करके हम लोग उनका स्वार्थ साधन नहीं कर रहे हैं, अपना हित करने के लिए हमें सुनना है। लेकिन भगवान चाहते थे कि सब अपना हित करे, इसे पढ़ करके सुन करके। तो जिस भागवत के सुनने पर भक्ति उत्पद्यते, कस्मिन किसने, एक बार वो कह चुके अधोक्षज, अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान वेदव्यास और शुद्ध गोस्वामी बहुत सावधान है, पुनः कहते हैं कृष्ण परम पुरुष। समझना चाहिए इस बात को, भक्ति का अर्थ ही है भगवान विष्णु में भक्ति, और कहीं की भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। अब भक्ति शब्द का प्रयोग और जगह नहीं किया जा सकता, देव भक्ति या देश भक्ति या यह भक्ति वह भक्ति, कई लोग इस भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसके पहले कोई शब्द जोड़ देते हैं, यह भक्ति वह भक्ति यह भक्ति वह भक्ति। भक्ति का अर्थ ही है कृष्ण भक्ति। शुद्ध गोस्वामी बहुत सावधान है, इसीलिए वे अधोक्षजे कृष्ण परम पुरुष है, और कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं परम पुरुष है, परम ईश्वर, परम परमेश्वर, श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अथवा परम पुरुष है और अधोक्षज है और उधर पूर्णम पुरुषम, तो इससे कुछ क्लियर बहुत नहीं हुआ। कोई भी कह सकता है कि ये परम पुरुष है या वो पूर्ण पुरुष है या वो अधोक्षज है, इसीलिए उन्होंने सारा अर्थ रिजर्व कर दिया कृष्ण। कृष्ण नान्यस्मि न अन्यस्मि भक्ति उत्पद्यत। और इसे यह भी सिद्ध हो गया कि भागवत सुनने से कृष्ण में ही भक्ति उत्पन्न होगी, और जगह नहीं। कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाती है भक्ति उत्पद्यते। जिस दिन सुनते हैं प्रथम दिन, एक मिनट भी दो मिनट भी, उसी समय भक्ति उत्पन्न होने लगती है। भक्ति के कई स्तर हैं उत्पन्न होने के, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत विस्तार से बताया है, श्रील प्रभुपाद भक्ति रसायन सिंधु में मेटर ऑफ डिवोशन में बहुत सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है, किस तरह से भक्ति उत्पन्न होती है और डेवलप करती है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा होता है तो गर्भाधान होना वो भी बच्चा उत्पन्न होना है, जिस दिन बच्चा उदर में हुआ उसी दिन माना जाएगा कि उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ तो उसको फिर पोसा जाता है, पाला जाता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि बच्चा पेट में पलता जाता है और फिर वो प्रकट होता है। यह उदाहरण तो शास्त्रों में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन किसी लता का बीज बो करके उसे उत्पन्न करना, सींचना, पटाना, इस चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया है और भागवत में भी है। भक्ति बल्ली, स्नेह बल्ली, बल्ली मानी लता। जैसे कोई व्यक्ति भूमि का शोधन करके भूमि से अनवांटेड घास आदि निकाल करके उसमें पानी डाले, उसको आर्द्र करे और उसमें बीज डाले तो बीज प्रस्फुटित होगा, अंकुर होगा, इसके बाद फिर लता का रूप लेगा, फिर लता फलेगी, उसका फल खाया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपमा लता से दी। तो जिस दिन लता परिपक्व होगी और कृष्ण के चरण कमल में चढ़ेगी, मतलब कृष्ण विषय होंगे, तो उस समय जीव को कितना सुख मिलेगा इसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रथम बार जब भक्ति उत्पन्न होती है उसी समय जीव के शोक मोह को नष्ट कर देती है। भाई जीव इस प्रकार से तीन स्थितियों में यहां पड़ा हुआ है, शोक, मोह और भय। इन शब्दों को हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शोक का अर्थ होता है चिंता, जो भूतकाल में हो चुका है, कोई दुख हमारे मन पर असर है और उसका बारंबार जब हम चिंतन करके जलते हैं तो उसको शोक कहा गया। संस्कृत में सुच शब्द का अग्नि भी होता है। जिस चिंता से हम जलते हैं तो इसीलिए इसको शोक कहते हैं, इसमें जलन शब्द प्रधान है, जलते रहते, कुछ न कुछ सोचकर जलते रहते। और भविष्य में कोई दुख की आशंका करके मन हमेशा विकल रहता है, घबराता है, तो उसको भय कहते हैं। ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसा न हो जाए, जीव हमेशा भय में है। भय का कारण क्या है? भय का कारण है कि नश्वान शरीर को मैं माना है। शरीर तो जाएगा ही, ये बूढ़ा होगा, कटेगा, छटेगा, सांसारिक स्थितियां बदलेंगी, कभी धन भी चला जाएगा, कभी धन आएगा। और सबसे बड़ा भय क्या है? मर जाना, शरीर छोड़कर चले जाना। ये भय लगा हुआ बहुत बड़ा भय। घर में ताला लगाना, चोर से भय करना, तो ये तो कुछ भी भय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा भय नहीं है। भय है कि इस शरीर से जाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से शरीर से जाना भी भय नहीं है। भय ये है कि फिर शरीर में आना पड़ेगा, दूसरे शरीर में, और फिर जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा ऐसे भोगना, निरंतर ये जो दुख है ये बहुत बड़ा भय है। लेकिन इस महाभय से कोई भयभीत नहीं है, केवल संसार के थोड़े थोड़े भय से भयभीत। तो भय बना हुआ है हर एक स्थिति में और शोक बना हुआ है, और शोक और भय के बीच में यह मैं हूं और यह मेरा है, ये मोह बना हुआ है, अज्ञान। जीव जलता है, भयभीत होता है, लेकिन इसका कारण है मोह। मोह का अर्थ होता है शरीर में मैं बुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि हो गई है, इसको मोह कहते हैं। और इस मोह का दूसरा रूप है यह मेरा है, यह मैं हूं, ये तो फाउंडेशन है, मूल है। और इसके साथ ही साथ इस देह से कनेक्टेड जो कुछ भी है वो मेरा है। सत्य अनुभव की बात हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी को ट्रेन में कोई जगह न मिले आरक्षण में और उसे टिकट अलाउ करके ठीक है आप खड़े रहिए, वो खड़ा रहने वाला आदमी खुश रहेगा, वो किसी तरह से जगह मिल गई। लेकिन जिसका आरक्षण हो चुका है, उसकी सीट है और उसको खड़ा रहना पड़े, वो तो आदमी नख से सिख तक एकदम जलता रहेगा। इसको मम कहते हैं। इसको थोड़े काल के लिए भावना हो गई, वेयर इज माई बर्थ, दिस इज माई बर्थ, मेरा बर्थ, मेरा बर्थ, और मैं खड़ा होकर के चलूं, वो आदमी मर जाएगा ऐसे, उसका सीट हो तो खड़ा चलने में। यह है मोह, वास्तव में भावना हो गई है कि सीट मेरी है। इसी तरह से बच्चा में और स्त्री में और घर में ये मोह है, ये मेरा है। क्यों? क्योंकि हमारे देह का है, हमारा है, हमारा तुम्हारा है, तुम्हारे देह का है। देह से उसका कनेक्शन है, आत्मा से वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं। ये सोचते रहते हैं कैसे इसका खर्चा चलेगा, कैसे ये जिएगा, कैसे क्या होगा, ये होगा। प्राय बूढ़े माता पिता तो और यही सोचते रहते। प्रत्येक आदमी अपना कर्म फल लेकर के आया है और हम उसके कर्म कोष में एक रत्ती भी डाल नहीं सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। यह निश्चित विश्वास रखिए। आदमी सोचता है कि मैं पिता हूं, मैं इसके लिए करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, हम पिता हैं तो पिता के कारण कुछ कर्तव्य होता है कि हम बच्चे के लिए करें। लेकिन वो बच्चा अपने कर्म के साथ जन्म लिया है। कितने तो ऐसे बच्चे हैं कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मां मर जाती है, फिर भी ऐसे ऐसे बच्चे संसार का राजा बने हुए हैं। ऐसा उदाहरण जैसे परीक्षित महाराज, उनके पिताजी नहीं थे, अभिमन्यु युद्ध में मारे गए जन्म से पहले, और अभी गर्भ में थे तभी ब्रह्मास्त्र चलने लगा। ये कथा आएगी सप्ताह, लेकिन फिर भी वो बच्चा बच गया क्योंकि ईश्वर उसको बचाना चाहते, और वह सम्राट बना, महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बना। और बड़े बड़े सम्राट लोग महाभारत में मार दिए गए। ये होता है, लेकिन संसार में सबके मन में ये मोह बना हुआ है, मैं देह हूं और देह के अनुगत पदार्थ या लोग मेरे। मोह बना सब जगह, जबकि यह बहुत बड़ा दुख है। तो शोक, मोह और भय, ये तीनों भक्ति से चले जाते हैं। पुरुष के जीव के, जीव का शोक, मोह, भय चला जाता है भगवान में भक्ति उत्पन्न होने पर। और भक्ति उत्पन्न होती है भागवत सुनने पर। जस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयाता। इतना सुंदर श्लोक है। तो अब तो किसी को संदेह नहीं होगा कि भागवत पढ़ने का और सुनने का क्या फल है। फल है कृष्ण परम पुरुष से भक्ति, ये फल है। और भक्ति आएगी तो अपने आप दुख तो अब चला जाएगा, उसको ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। भक्ति उत्पन्न होगी और शोक, मोह, भय सब चला जाएगा। प्रभाव होता है। नौ जोगेश्वरों में से कवि नामक जोगेश्वर वर्णन करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय ग्रास ग्रास पर तीन फल उसे प्राप्त होते जाते हैं अपने आप, तुष्टि पुष्टि क्षित पाय। तुष्टि का अर्थ है सुख, एक एक ग्रास पर सुख मिलता है। आदमी कहता है ओह वेरी नाइस, बहुत स्वादिष्ट, तुष्टि प्राप्त हो। और पुष्टि, शरीर में कुछ शक्ति बनती है, मुरझाया हुआ शरीर खिलने लगता है, एक एक ग्रास और छुत पाय और भूख की ज्वाला का नाश भी ग्रास ग्रास पर होने लगता है। ये तीनों एक साथ होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति केवल एक क्रिया कर रहा है, खा रहा है, लेकिन तीन रिजल्ट अपने आप प्राप्त होते हैं। सुख मिलता है और शरीर में बल बढ़ता है और भूख का नाश होता है। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल भक्ति, उसको तीन रिजल्ट अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। क्या? भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षण, भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है। भक्ति करने से भगवान में अनुराग बढ़ने लगता है, भक्ति और विरक्ति, और भगवान से इतर पदार्थों से मन हटने लगता है अपने आप। और भक्ति विरक्त भगवत प्रबोध, और भगवान कितना मधुर है, कितना मेरे है, कितना ऐश्वर्यशाली है, क्या है, भगवान का अनुभव ज्ञान बढ़ने लगता है। उनका ज्ञान मिलना और उनके प्रति प्रेम बढ़ना, और इन दोनों से विमुख जीवों और पदार्थों से मन हटने लगना, ये अपने आप होता है भक्ति करने से। भगवान का अनुभव मिलने लगता है और भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है, और सांसारिक पदार्थों से स्थितियों से मन हटने लगता है, उसका आग्रह नहीं रह जाता मन में, केवल भक्ति करने से होता है। ऐसा नहीं कि एक एक के फल के लिए अलग अलग साधन करो, इसके लिए वो करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, सब कुछ होने लगता है। तो भक्ति ही सार है, श्रीमद् भागवत का सार है भक्ति, भागवत इसके लिए रचा गया। तो भगवान वेदव्यास देव इस भागवत का इस तरह प्रकाशन किए, और सूर्य जी आए कहते हैं कि ससंहिताम भागवती कृत्वा सह, ऐसे परम कृपालु भगवान वेदव्यास देव भागवती संहिताम कृत्वा, इस भागवती संहिता को बनाकर कृत्वा और अनुक्रम में फिर रिविजन किए, रचने के बाद इसको फिर से देखे, कई बार खूब विचार किए, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कोई अंश छूट तो नहीं गया है, इसकी व्याख्या की जरूरत है या क्या क्या करना, इसको अनुक्रमण कहते, अनुक्रम में रच करके और एक एक श्लोक एक एक अक्षर विचार करके और तब अपने पुत्र को पढ़ाए। आत्मजम अभ्यापयामास, अपने आत्मज को पढ़ाए, उनके देह से जो उत्पन्न हुआ था, मतलब सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। आत्मजम क्या नाम था? सुकम। सुकम आत्मजम अभ्यापयामास। और सुखदेव जी की विशेषता एक बता रहे हैं, निवृत्ति निरतम, जो भगवान के रस में इतना मग्न थे, संसार के पदार्थों में उनका कभी मन गया ही नहीं, इसको निवृत्ति निरत कहते हैं। निरत नितराम रत, जैसे संसार के लोग निरंतर संसार की वस्तुओं में ही रत है निरंतर, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी निरंतर भगवान में रत थे, इसको निवृत्ति निरत कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ होता है कि संसार से निवृत्त और भगवान में मन का फिक्स हो जाना, इसमें वे रत। क्या क्या शब्द है भागवत में, हम लोग प्रयास करते हैं कि दो चार मिनट के लिए भी मन निवृत्ति में आ जाता है, हटता है, लेकिन हटता नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी का 24 घंटा मन निवृत्ति निरत, तो ऐसे निवृत्ति निरत आत्मजन को अध्यापया मास, पढ़ाया ममता से पढ़ाया। जैसे सुखदेव गोस्वामी के दो क्वालिफिकेशन दिए गए, पहला क्वालिफिकेशन तो ये है कि वे भगवान के पुत्र हैं, वेदव्यास देव के पुत्र हैं,
और विद्यास देव कोई भौतिक शरीर वाले हैं ना, स्पिरिचुअल है सुखदेव गोस्वामी का शरीर विद्युत देव। तो पढ़ाने में एक तो अपना पुत्र है अनुराग के साथ पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि आत्मजन शब्द का प्रयोग किया गया, अपना है, अपने देह से जन्म लिया। तो दूसरे हम लोग तो अपने पुत्रों को भेज देते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, और ऐसे पढ़ाते नहीं है, तो केवल ट्यूशन फीस लेना चाहते हैं। वास्तव में आज के युग में ये तमाशा है। पहले विद्या एकदम फ्री थी, ज्ञान फ्री था, और चीज खरीदा जाता था, दाम लगता था, लेकिन विद्या में नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे या द्वारकाधीश के पुत्र थे उस समय, और सुदामा जी एक बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। ये नहीं पैसा है तो आप इस प्रकार के कोचिंग स्कूल में इसको भेजो, और नहीं पैसा है तो सब प्रवृत्ति में रहने पर मन इधर उधर विकसित कराता है। और भगवान विद्यास देव जानते थे कि इस भागवत को ग्रहण करने की योग्यता उनके अन्य शिष्यों में नहीं है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं अपने मुख से बताया है नया अध्याय नए स्कंध में, हित्वा पायला दिन शिष्यान, अपने पायल और जैमिनी आदि शिष्यों को हित्वा त्याग कर भगवान मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, क्योंकि जैमिनी पायल पराशर आदि उनके शिष्य थे भगवान विद्यास देव के, लेकिन इन लोगों की रुचि बहुत बहुत सब्जेक्ट में थी, केवल भगवान में ही रुचि नहीं, भगवान में थी लेकिन और विषयों में बहुत ज्यादा, जैसे जैमिनी जी की कर्मकांड में बहुत रुचि थी, और वैष्णव पायन जी की रुचि कथा कहानी कहने में, महाभारत आप पढ़ते हैं बहुत रुचि थी। पर सुखदेव गोस्वामी तो एक शब्द बोलते ही नहीं थे, उनकी रुचि क्या संसार में होगी इतने विरक्त। तो भगवान गदव्यास देव जब पुत्र नहीं हुआ था तो उस समय भगवान कृष्ण की आराधना किए बद्रिकाश्रम में, और इन्होंने पुत्र मांगा भगवान से कि आप हमें पुत्र दीजिए जिसको मैं भागवत पढ़ाऊं। भागवत रच करके आवृत्ति करके रिविजन करके रखे थे, कोई शिष्य योग नहीं मिल रहा था, तभी तप किए और तप करके चाहते थे कि हमें पुत्र प्राप्त हो जिसको मैं भागवत पढ़ाऊं। तो उसी तपस्या के प्रभाव से सुखदेव गोस्वामी हुए। जब घर छोड़ करके चल दिए तब भगवान वेदव्यास देव का शोक बढ़ गया, जौना बेटा के कैली आस उ गोल केवड़ी ढोरा जिस बेटा की आशा किया वो इस तरह से दगा दिया। हमारे यहाँ हमारे गांव के पास और दो गांव है, नाम है केवड़ी और नेवरा, तो लोग ऐसे कहते हैं कि जौना बेटा के कैली आस उ गोल केवड़ी नेवरास वहाँ ये बहुत चलता है, मतलब जिस बेटा पर भरोसा किया वही छोड़ छाड़ कर चल दिया, जिसके लिए भागवत रच करके रखा गया वो तो उन लोगों से भी खराब निकल गया। वो लोग तो भला पढ़ते भी जैमिनी आदि, लेकिन तो पढ़ा भी नहीं, उस माँ के गर्भ से निकला और चल दिया, और पीछे से भगवान वेदव्यास देव हा पुत्र कह करके जाने लगे, बेटा लौटो लौटो। वही भगवान वेदव्यास देव साधारण प्राकृतिक व्यक्ति नहीं थे कि सांसारिक मोह से रो रहे थे, वो इसीलिए रो रहे थे कि अब कौन भागवत पढ़ेगा, मूल शोक का कारण यह था उनका। लेकिन सुखदेव जी बहुत तर्क वितर्क किए और नहीं लौटे, लौटे ही नहीं। तब वेदव्यास देव ने एक उपाय किया कि अपने कुछ शिष्यों को, बालक शिष्यों को, उन्होंने भागवत का छिटफुट श्लोक स्मरण करा दिया, और उनको कहा कि तुम लोग जाओ लकड़ी लाने के लिए, पत्र लाने के लिए, उस वन में बताया जिधर सुखदेव गोस्वामी रहते थे, तो उधर जाकर भागवत का श्लोक गाना, तुम लोग हमेशा गाते रहो। तो ये बच्चे जा जा करके गाया करते थे, तो सुखदेव गोस्वामी एक दिन दो श्लोक सुने, एक श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन था और दूसरे में भगवान के सौंदर्य का, वृंदावन में प्रवेश कर रहे बरहा पीडम नटवर बपु एक श्लोक, और पूतना को उन्होंने जो गति दी उद्धव जी के मुख से निकला हुआ अहो बकीयम स्तन काल को, ये दो श्लोक सुखदेव जी ने सुना और सुनते ही उन बच्चों के पास आ गए और उन्होंने कहा फिर से बोलो फिर से बोलो फिर से बोलो। भगवान के सौंदर्य और करुणा ने उनके चित्त को आक्रांत कर लिया और लगे कहने कि हमको यह श्लोक याद करना है याद करना है। वो बार बार बोलवा रहे थे और तो बोलने लगे तो इन बच्चों ने कहा कि आप एक दो श्लोक के लिए इतना मरते हैं, हमारे गुरु जी 18,000 श्लोक रचे, आप उनसे क्यों नहीं सुनते। तो पूछे तुम्हारे गुरु कौन है, वो बताया कि भगवान बुद्ध व्यास देव हमारे गुरु। तो ये तो जानते ही थे वो तो हमारे पिता है, कहाँ है तो निकट बद्रिकाश्रम में है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं लौटता है, चलो 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 चलो, अपनी गर्व से आकर के फिर प्रणाम किए और कहे पिताजी हम भागवत पढ़ना चाहते, इस तरह से खींच करके ला दिया भागवत का श्लोक। इसीलिए आगे श्लोक में आएगा हरे गुणा क्षिप्त मति, हरे गुण ही आक्षिप्त मतिर जस्य, भगवान के गुणों ने कृष्ण के गुणों ने उनके मति को छीन लिया, मतलब अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, ब्रह्म ज्योति के सुख से अपनी ओर खींच लिया और आ करके अपने पिता से अध्ययन किए भागवत के, एक एक अक्षर का एक एक श्लोक का खूब अच्छी तरह से। 12वें श्लोक में लिखा गया ग्रहण हरिर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बागरायणी अभ्यदान महदाख्यानम नित्यम विश्व जनप्रिय। तो निवृत्ति निरतम शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान व्यास देव ने अपने विरक्त शिरोमणि पुत्र को पढ़ाया। तो सौनक जी इस पर शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या शंका है कि प्रायः जो विदग्ध मुनि होते हैं सन्यासी होते हैं वे इस तरह से कोई ग्रंथ पढ़े इतना आग्रह कभी नहीं होता है। और सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो अपने पिता की उपेक्षा करके घर से चला गया, जन्म लेते ही इतना विदग्ध कि संसार का उसे कोई संबंध सौंदर्य कोई वस्तु खींच नहीं पाई, वह व्यक्ति फिर आकर के ग्रंथ पढ़ेगा ऐसा तो नहीं सुना गया है। तो सौनक जी इसी पर प्रश्न करते हैं, सवै निवृत्ति निरत सर्वत्रो प्रेक्षको मुनि कस्वा बृहति मे ताम आत्मा राम समभ्यसत। सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति निरत थे, सर्वत्र उपेक्षक थे, मुनि थे और आत्मा राम थे, तो फिर बृहति एताम इस विशाल ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन कैसे किया, ये आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ है चाहे आत्मा राम हो चाहे सर्वत्र उपेक्षक हो परंतु भागवत का उपेक्षक नहीं हो सकता है। सर्वत्र उपेक्षा करने वाला भी भागवत की अपेक्षा करके घर लौट आया तो और सबकी उपेक्षा की जा सकती है लेकिन ये भागवत सप्ताह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति आकर के भागवत पढ़ा तो निवृत्ति निरत सबका मूल कारण क्या है, मुनि। सुखदेव गोस्वामी मुनि, मुनि शब्द यहाँ स्पेशल अर्थ रखता है, जो मननशील थे और प्राकृत पदार्थों को छोड़कर भगवान के लीलाओं का मनन करते थे। वे वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का मन निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आसक्त नहीं था, भगवान की लीलाओं में ही उनका मन आसक्त था, इसलिए वे घर छोड़कर चल दिए थे। तो ब्रह्म ज्योति में आसक्त रहने वाला इतने त्याग कर ही नहीं पाएगा। या श्रीमद् भागवत में जहां तहां लिखा गया है भगवान की लीलाओं के मनन चिंतन में घर छोड़कर निकल गए, नहीं तो अब भगवान व्यास देव उनको व्याकरण पढ़ाना चालू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, झंझट को कौन पढ़ेंगे, तो चल दिए। इसको मुनि कहते, मुनि का अर्थ है मनन सिंह। किसका मनन? मनन का अर्थ है कि मन को जिसमें लगाया जाए, बार बार जिसका चिंतन किया जाए, उसको मनन कहते हैं। मनन, मन शब्द से मनन शब्द बनता, मन से बारंबार चिंतन करना। वो कर रहा था भगवान का चिंतन, इसलिए निवृत्ति निरत। जब भगवान का रस मिल रहा था तो संसार के रस से निवृत्त थे, इधर एक सेकंड भी उनका मन खींचा नहीं जा रहा था। संसार के किसी भोग में ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा आकर्षण नहीं कि उनके चित्त को खींच सके, और इसी कारण से सर्वत्र उपेक्षक, सर्वत्र उपेक्षक। और साधारण जीवों की दशा है कि सर्वत्र अपेक्षक, सर्वत्र अपेक्षक, अपेक्षा करता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। सुखदेव गोस्वामी तो सब कुछ की उपेक्षा कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वत्र उपेक्षक का अर्थ है कोई इच्छा नहीं थी उनको ब्रह्मलोक के भोग की, यही श्लोक के कुछ भी उपेक्षा नहीं, क्योंकि बहुत भारी रस में थे। और सबसे बड़ा कारण ये था आत्मा राम, और इसीलिए वे आत्मा में भगवान श्री कृष्ण में आ राम रम रहे थे, उनका सुख वही था, दूसरा नहीं। उसको आत्मा राम कहते, आत्मनि आ सम्यक रमते इति आत्मा राम, जो आत्मा में भगवान श्री कृष्ण में रमे उसको आत्मा राम कहा। या अपने स्वरूप में रमे तो स्वरूप में जीव का कृष्ण का नित्य दास है, इसीलिए भगवान की नित्य सेवा करना इसमें जो रमता है उसको आत्मा राम कहते हैं। तो आत्मा राम थे, रमे हुए थे, सर्वत्र उपेक्षा के रस में डूबे हुए थे। तो ऐसा महान व्यक्ति जो कृतार्थ हो चुका है, जिसको भगवत रस मिल चुका है, वो क्यों फिर ग्रंथ को पढ़ेगा? इससे भागवत की महिमा व्यक्त हो रही है। भागवत की बहुत बड़ी महिमा व्यक्त हो रही है। जब आत्मा राम मुनि गण भी भागवत पढ़ने के लिए लौटते हैं सुनने के लिए, तो रात दिन ऑफिस और घर में रहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं सुनेगा इसको? वो कौन से रस में है ना? उसको तो कोई रस मिल नहीं रहा है संसार में, तो दुख से जल रहा है, तो वो क्यों नहीं सुनेगा? जबकि ऐसे परम सुखी कृतार्थ जीव सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लोग इस भागवत को पढ़ते थे। तो जीवन के किसी भी स्तर पर भागवत पढ़ने लायक है, सुनने लायक, गाने लायक। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अपने जीवन के आचरण से बताया। उस दशा में भी जब कृष्ण के विरह में है, भागवत गाना सुनना यह जीवन है। भागवत केवल कोई साधन मात्र नहीं है। भाई हम सिद्धि को पा गए तो साधन को छोड़, वो रिक्शा करके जा रहे हैं, हायर करके हम पहुंच गए जहां जाना है, तो देखते भी नहीं है रिक्शा को, छोड़ो। इससे साधन का त्याग कर दिया, साधन हमको पहुंचा दिया, तो अब साधन से कोई प्रेम नहीं है। किसी ट्रेन पर आ रहे हैं आप, आ रहे हैं, उतर गए, उतर कर अपने घर चले आए, तो ट्रेन के विषय में चिंता ही नहीं करते हैं कि बाकी लोग कितना गर्मी में होंगे, क्या कर रहे हैं, चिंता नहीं करते हैं साधन की। आगे एक्सीडेंट भी हो जाए तो बहुत मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो श्रीमद् भागवत का इस तरह का केवल साधन नहीं है, साधन है लेकिन स्वयं अपने आप में यही सिद्धि है, यही साध्य। इसमें भगवान वेदव्यास देव ने कहा है कि त्रिगत भागवतम रसम आलयम, आलयम का अर्थ है कि मुक्ति पर्यंत इसको पियो। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक पियो नहीं, जब मुक्ति तक पियो, हा माने पर्यंत मुक्ति तक पियो, भगवान के धाम में जाने के बाद भी पियो। वहां तो खैर उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, उपदेश भूमि इस पृथ्वी पर आवश्यकता है। जब तक इस पृथ्वी पर हो पियो पियो, तिब्बत भागवतम रसम। इस तरह से भागवत महान ग्रंथ है पीने के लिए। तो सौनक जी की शंका है, निवृत्ति निरत, सर्वत्रोपेक्षक, मुनि
और आत्माराम कैसे इस ग्रंथ को पढ़ा, वो भी बृहति विशाल ग्रंथ है। बृहति बृहति संहिता में विशेष कश्य वा, किस कारण से क्यों पढ़े, वो भी समाध्यास है। इसको पढ़ने में बहुत समय लगा होगा, अन्वय करना, ये करना, वो करना, कई तरह से पढ़े होंगे, कैसे इसमें उनका मन लगा पढ़ने। सूत उवाच, सूत जी उत्तर देते हैं कि इसमें कारण क्या है, कारण भगवान का गुण है। इथम भूत गुण हरि कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। इत्थं भूत गुणो हरि, यही मूल वाक्य है। भगवान का ऐसा गुण ही है, ये उत्तर हुआ। भगवान इतने विलक्षण रसमय वस्तु है, इतने विलक्षण है कि चाहे कोई निवृत्ति निरत हो, आत्मा राम हो, मुनि हो, उसको अपने गुण से खींच ही लेते हैं और भक्ति करता है, वो भक्ति करेगा। इस श्लोक की बहुत विशद व्याख्या की गई है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसकी 61 व्याख्या की है और सब व्याख्या एक दूसरे से मिलते हुए। आत्मा रामाष्ट मुने, आत्मा राम का अर्थ आत्मा में रमने वाले, तो आत्मा के 7 अर्थ होते हैं, उन 7 में जो रमता है आत्मा राम। आत्मा के 7 अर्थ इस तरह से है, देह, मन, बुद्धि, धैर्य, भगवान और कौन कौन है, प्रयत्न, धृति। धृति को तो मैं धर्ज कह दिया, प्रयत्न, इच्छा, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, चेतन महाप्रभु किए हैं अर्थ, आत्मा के 7 अर्थ, जय, धृति, देह, मन, इंद्रिय, भगवान और जीव, आत्मा, ये 7 अर्थ है। इसमें जो रंग है वो आत्मा राम है, तो जो अपने देह में रंग रहा है वो भी आत्मा राम है। या अपने दुकान खोल करके उसमें अपने जप्न में काम धाम में लगा हुआ है वो भी आत्मा राम है। चैतन्य महाप्रभु अर्थ करते हैं, कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है यदि उसे कृष्ण के गुणों को सुनने को मिल जाए, तो जो देह में रम रहा है वो भी आत्मा राम है, अपने मन में रम रहा है वो भी आत्मा राम है, जहां मन करता है वहां घूम रहा है वो भी आत्मा राम है। तो पहले डिक्शनरी जैसा अलग अलग शब्दों का भी अर्थ करते हैं, आत्मा का ये 7 अर्थ है, राम आराम, आराम का अर्थ सम्यक रमते ही थी, तो अलग अलग आत्मा के साथ रमना बैठा करके अर्थ किया जाएगा। आत्मा राम से मुनय, अच्छा च अव्यय है, इसके भी कई अर्थ होते हैं, च के भी कई अर्थ होते हैं, चैतन्य महाप्रभु गिनाए हैं। च का अर्थ है जोड़ना, वो जोड़ने वाले, इसको जोग कहते हैं, एक शब्द से दूसरा जुड़ता है, इसको च कहते हैं, यह और अर्थ में च का शब्द प्रयोग, और च का प्रयोग होता है भी, आलस अंग्रेजी में कहते हैं, इसके साथ ही साथ भी करते हैं। और च का अर्थ है अवश्य, और इस तरह से कई अर्थ किए हैं च का, ये अव्य आत्मा राम से मुनय, और मुनि का अर्थ भी कई किए हैं। मुनि का ऐसे जनरल अर्थ तो ऋषि मुनि होता ही है, मुनि शब्द का यही अर्थ होता है, लेकिन मुनि शब्द संस्कृत शब्दकोश से किया गया है, मुनि शब्द के 11 अर्थ होते हैं। मुनि शब्द का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता है, मौन। मनुष्यों के अलावा जितने प्राणी हैं बहुत कम बोलते हैं, इसलिए सब मुनि। पक्षी को भी मुनि कहा गया, और मननशील तो इसका अर्थ होता है मौनी अर्थ होता है, तपस्वी अर्थ होता है, ऋषि अर्थ होता है, यहाँ तक कि मुनि का अर्थ कर्मी भी होता है, अपने काम में धंधे में रम रहे हैं, मुनि का भी अर्थ होता है। और मुनि का खास अर्थ एक होता है कि जो बोल नहीं सकते, वृक्ष बोलते नहीं है उनको मुनि कहते हैं। वृंदावन के वृक्ष भी भगवान की भक्ति करते हैं, गाय बैल ये बेचारे बोलते नहीं है ये भी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा भगवान का गुण है। कृष्ण के संपर्क में आ जाए बस भक्ति करने लगेगा। आत्मा रमस्त मुनि निर्ग्रंथा, और निर्ग्रंथा का अर्थ है जो ग्रंथ से ऊपर उठ गए हैं, विधि निषेध से परे हो गए हैं, मूल अर्थ तो ये होगा। इसके साथ ही साथ ग्रंथी शब्द का अर्थ होता है गांठ, जिसके पास बहुत धन हो उसको सग्रंथ कहते। पहले ऐसा नोट नहीं होता था तो लोग कहीं चलते थे तो गांठ बांध कर चलते थे, पैसा लेकर देते, और जिसके पास पैसा नहीं होता था उसको निर्ग्रंथ कहते थे, गरीब। निर्धन गरीब भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और निर्ग्रंथ का एक अर्थ होता है जिसके पास नितरान ग्रंथी हो, व्याध को ग्रंथी सग्रंथ कहते, निर्ग्रंथ कहते, व्याध जिसे मृगारी भक्ति किया। और निर्ग्रंथ का अर्थ है कि जो ग्रंथ कभी पढ़ नहीं सकते हैं, सुने भी नहीं कि भागवत क्या चीज है बिना ग्रंथ के। भागवत पाठ करने वाले भी भागवत सुन रहे हैं, और जो अब तक भागवत नहीं पढ़े होंगे वो भी सुन रहे हैं, वो भी भगवान के भक्त है। निर्ग्रंथ का एक अर्थ है ग्रंथ नहीं पढ़े। तो पशु पक्षी आदि तो कभी ग्रंथ पढ़े क्या, जान सुनते नाम भी नहीं जानते होंगे भागवत कोई ग्रंथ, ये भी भक्ति कर सकते किए है। दशम स्कंध में सब वर्णन है, भगवान उनकी भक्ति का स्वयं अनुमोदन किए, प्रशंसा किए। तो निर्गम था ये लोग भी, अति शब्द अव्यय है इसके भी कई अर्थ है। ये लोग भी अहैतुकी भक्ति कुर्वंत कुर्वंते अहैतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। अब इत्थम भूत शब्द बता रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान का ऐसा आकर्षण है कि आत्मा राम मुनि भी उनमें अहैतुकी भक्ति करते हैं, पशु भी करते हैं, व्याध भी करते हैं, निर्धन करते हैं, धनी करते हैं। निर्ग्रंथकार से नितराम ग्रंथ, जिसके पास बहुत ग्रंथ है, बहुत गांठ है, बहुत पैसा है, वो भी भक्ति करता है। और निर्ग्रंथ का अर्थ एकदम कंगाल है, वो भी भक्ति कर सकता है। ये वास्तव में कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके हैं, और किसी भी अवस्था में सुलभ है, कहीं भी। ऐसा नहीं कि गरीब हो गया तो भगवान उसके नहीं है, या ज्यादा धनी हो गया तब भगवान उससे रंज हो जाएंगे, भगवान का भजन नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। जैसे पिता है, पिता के पुत्र का कोई पुत्र धनी हो जाए गरीब हो जाए फिर भी उसका समान संबंध बना रहता है, इसी तरह भगवान हरि श्री कृष्ण जो भक्तों के दुख को हर लेते हैं और अपने प्रेम अपना प्रेम देकर के मन और नेत्र हरते हैं, उनमें ऐसा विलक्षण गुण है, जीवों के साथ उनका ऐसा संबंध है कि कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आएगा भजन करेगा। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि देह में महाआसक्त व्यक्ति भगवान का परम भक्त हुआ, महानिर्धन भगवान का भक्त हुआ, पशु भक्त हो गया, पक्षी भक्त हो गया, जटायु पक्षी थे। जो सीता जी का अपहरण हो रहा था तो रावण से युद्ध किए, और युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया गया, उनके पंख को रावण ने काट दिया। एक पक्षी तक भगवान की भक्ति कर सकता, बानर तो महाभक्त है ही, हनुमान जी बानर, ये बानर भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो नर क्यों नहीं कर सकता? नर तो जब होगा तब बानर से श्रेष्ठ ही है ना? जब वाह नर कर सकता है तो या नर क्यों नहीं कर सकता? ये सोचने की बात है वास्तव।
वानर नरो वानरो वा श्रीमद भागवत में लिखा गया है। जब नर कर नर वा अनर है, नर हो चाहे अनर हो, वा नर का अर्थ भागवत में किया गया है। वा माने अथवा, नर शब्द पंचम स्कंद हनुमान जी खुद बोल रहे हैं, नरो वा नरो, नर वा अनर कोई भी हो भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल नर शरीर से करेगा। क्या शर्त है कि भगवान के गुण से उसका संपर्क हो जाए, बस वो भक्ति करेगा। और अहेतु की भक्ति करेगा, हेतु के कई अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताए, और अहेतु की मतलब भगवान से प्रेम करेगा तो बस प्रेम करेगा, उनसे कुछ चाह करके प्रेम नहीं, किसी वस्तु की कामना करके नहीं। तो वृंदावन लीला में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के आगे मोर नाचते थे, तो मोर भक्ति करते थे और कृष्ण को देना चाहते थे, कृष्ण से लेना नहीं चाहते थे। कृष्ण के आगे ये नाचते नाचते अपना मोर पंख गिरा देते थे और कृष्ण उसको लेकर अपने सिर पर धारण करते थे, वो देते थे, कृष्ण से लेते नहीं थे। या कृष्ण को नाच दिखा दिखा करके कृष्ण को सुखी करते थे। कुर्वंती यह शब्द करते, कृष्ण में भक्ति करते, कृष्ण के प्रति भक्ति करते हैं, अपने आप सिद्ध कर रहा है कि कृष्ण के सुख के लिए करते हैं। प्रश्नय पद का प्रयोग किया गया है, कुर्वंती, कुर्वंती शब्द अपने आप यह सिद्ध कर दिया है कि वह व्यक्ति जिसने भक्ति कर रहा है उसका काम बनाने के लिए कर रहा है, कृष्ण के सुख के लिए भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो तो आत्मा राम थे, सुखदेव गोस्वामी परमहंस चूड़ामणि थे, वे भक्ति किए तो क्या आश्चर्य की बात है। पशु कर सकते हैं, पक्षी कर सकते हैं, ऐसा गुण है भगवान कृष्ण का। किसके लीला ने उनको खींचा, हरि की लीला, हरे गुणा क्षिप्त मति। वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य जीव का यही माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसे सुनने को मिले, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है जीव का कि कृष्ण के विषय में सुनने को नहीं मिलता, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य है साधु संग, लेकिन साधु संग का मतलब ही है कृष्ण का श्रवण, क्योंकि साधु की परिभाषा बारंबार भागवत में दी गई है। तो वहां कहा गया है जत्रो तमसलो गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, इथम भूत गुणो हरि, भगवान में ऐसे गुण ही हैं किसी को भी वो खींच लेंगे। तो भगवान के गुणों ने ऐसे उपेक्षक को अपेक्षक बना दिया। और रात दिन विरक्त रहने वाले घूमने वाले के आंखों में अजस्र आंसू बहाना चल बहवा दिया कृष्ण प्रेम। मौनी को 7 दिन और 7 रात निरंतर बोलने के लिए बाध्य कर दिया। यह है गुण भगवान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्राय रामो राजन निवृत्ता विधि से होता निर्गुण अवस्था रमनते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव गोस्वामी अपने प्रवचन के प्रारंभ में ही कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, जो भी विधि निषेध से अतीत है, मुनिजन है, निर्गुण प्लेटफॉर्म पर हो जाते हैं, प्राय उनका एक ही काम होता है। देखा गया है प्राय रमनते गुणानुकथने हरे, हरि के गुणानुकथन में रमते रहते हैं। रमना शब्द यह बताता है कि बिना किसी रूटीन के, बिना किसी बाहरी दबाव के, अपने आप जहां मन लगा रहे और हटाने से भी न होते उसको रमण कहते हैं। जैसे बच्चे खेलने में रमते रहते हैं, तो इनको रमना कहते हैं। बच्चे कोई शिक्षा देने पर खेलने नहीं जाते हैं, तुमको खेलना चाहिए, बल्कि रोका जाता है कि अब खेलो मत, चलो पढ़ो, वो जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, इसको रमण कहते, रमु क्रीड़ा है। तो इस तरह की परम आसक्ति को रमण कहते हैं। तो आसक्ति पूर्वक मुनिजन प्रायः भगवान के गुणों गुणानुकथन में रमे रहते हैं, बोलते रहते हैं। अगर कोई नहीं है तो गायंती गाते रहते हैं, नहीं कोई सुनने वाला है तो गाते हैं, बोलते हैं, और कोई बोलने वाला मिल गया तो सुनते श्रृणवंती श्रृणवंती गायंती गृणंत भिक्षण स स्मरंती नंदंती तवे हितं जना तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुज। और दूसरे लोग श्रवण कीर्तन में है तो अभिनंदन 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 करता है, अनुमोदन करता है। तो इस तरह से भगवान के बहुत से गुण है, यह इत्थम भूत गुण है। एक ऐसा शब्द है कि क्या कहा जाए, जैसे मान लीजिए किसी धनी व्यक्ति का वर्णन किया जाए और कहा जाए कि संसार में सब सभी की इच्छा पूरी कर सकता है, उसके पास बहुत धन है, ये धन है, वो धन है, वो धन है, सारे ब्रह्मांड को खिला सकता है, पिला सकता है, उसका वर्णन इतना ही पर्याप्त है कि अरे इतना धन उसके पास है ही कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा हरि का गुण है कृष्ण का कि वो किसी को भी खींच लेंगे। गोपी जन तो बांसुरी को कहती हैं कि सखी जो वेणु है बांसुरी है इसमें कोई रस नहीं है, तो साथ साथ छेद है इसके पेट में, एक छिद्र वाला कितना बुरा माना जाता है, छिद्र माने दोष, ऐसे साथ साथ छेद है, सूखा बांस है, लेकिन आज इसका कमाल देखो, क्यों ऐसी इसमें विशेषता आ गई, कईयों में रस बहाने लगता है। तो भगवान से संपर्क होने पर वास्तव में जीव ग्लोरियस होता है, आनंदित होता है, सुखी होता है। सुखदेव गोस्वामी जब वन में घूम रहे थे, संसार को छोड़कर उपेक्षा करके, यहाँ तक कि अपने पिताजी के स्नेह में शब्दों की उपेक्षा कर चुके थे, सब कुछ की उपेक्षा, न खाना न पीना कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के गुणों ने ऐसे खींचा जबरदस्ती की वो एकदम परवश होकर के आ गए। इसे आक्षिप्त लिखा गया, आक्षिप्त कहते हैं जबरदस्ती किसी को घसीट करके ला देना। आत्मा राम मुनि बने हुए और वो अब आकर के गोपी जनों की बात को कह कह करके रोने लगे। जब सुखदेव स्वामी कथा कह रहे थे दसम स्कंद की, और महाराज ने परीक्षित ने पूछ दिया कि एक साल पहले घटना घटी थी वो आज की घटना कैसे हो सकती है, ब्रह्ममोहन लीला जो ब्रह्मा जी गाय बछड़ा चुराए थे और बच्चों को चुराए थे, यह प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी को समाधि लग गई और वो लीला में जा पहुंचे, बोलना बंद हो गया। महाराज परीक्षित तो बहुत शोक में हुए कि अब कौन कथा सुनाएगा, ये तो लीला में तल्लीन हो। तो कीर्तन जोर से चालू हुआ, मृदंग और झांझ बजने लगे, तब जाकर के फिर बहिर्मुख हुए। ये भागवत में लिखा गया है। और जब वर्णन करते थे भक्तों के उद्गार भगवान के प्रति, जैसे गोपियों के उद्गार, तो सुखदेव गोस्वामी निरंतर आंसू से सने रहते थे, कहां गया आत्मा रामत्व, सब कुछ भूल गए, अब बहने लगे। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, क्या कहा जाए। श्री गोपी जनों ने बहुत बहुत इस पर विपरीत भाव से कहा है कि श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि ये किसी को भी फंसा लेते हैं और अपनी दासी बना करके और फिर छोड़ देते हैं। तो हमारा मन घर के काम धंधे में लग रहा था, गोपी जन कहती हैं कि जब भगवान रासलीला में गोपियों को लौटाने लगे, शुरू में ही लौट जाओ तुम वृंदावन की शोभा देख ली, ये कर लियो कर, तो गोपीजन कहते हैं कि चित्तम सुखे न भवता प्रहृतम गृहेषु जन निर्विशति। हमारा चित्त तो पहले घर के काम धंधे में लगता ही था, लेकिन इसको आपने खींचा क्यों? हमारा मन घर में लग रहा था, तो आपने बांसुरी द्वारा या मंद मुस्कान द्वारा, लीला द्वारा, जैसे तैसे आंखों के इशारे द्वारा हमारे चित्त को खींच लिया। चित्त को खींच लिया, हमारी दशा को आपने वैसी कर दी जैसे कोई पक्षी के दोनों पंख को तोड़कर कहे कि उड़ो। हमारे हाथ पैर तो आप तोड़ दिए, हमारा मन खींच लिए, अब हम ब्रज में जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो बिना मन के हम करेंगे क्या? वह इस तरह उलाहना देती। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम क्या तुम्हारे चित्त को खींचे, हम तो कुछ नहीं किए। कहते हैं आप में ऐसा आकर्षण ही आपकी बांसुरी में, इसमें, उसमें। कभी कभी तो गोपी जन कहते हैं आपका दोष नहीं है, आपके सौंदर्य का दोष है। आप इतना सुंदर है कि यह दोष है। आप क्या कर रहे हो? भगवान सुंदर है तो इसमें भगवान का क्या दोष है? कोई उनके सौंदर्य पर मरे या पीछे लगा रहे तो आप वो क्या करे? कुरूप बन जाए। इतना कृष्ण विलक्षण है कि आत्मा राम मुनि उनके पीछे, लता पता भी उनके पीछे, पशु पक्षी उनके पीछे, जो देखा जो संपर्क में आया वो विशुद्ध हो गया। हरिणियां अपने पतियों के साथ भगवान के सौंदर्य को देखती थी और चरना छोड़ दी, गायें चरना छोड़ देती थी, बछड़े दूध पीना छोड़ देते थे। चरने में कितनी गाय की आसक्ति होती है, बच्चे दूध पीने में कितना आसक्त होते हैं गाय का, लेकिन वो जीवन का उतना रसमय कार्य भी भूल जाते थे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा रामाष्ट मुनयो दुर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वंत है तो किम भक्ति निथम भूत गुण है। ऐसा गुण ही है तो गुण सुनकर कौन कौन भक्त हो गए? भगवान चैतन्य महाप्रभु गिनाए हैं, श्रुत्वा गुण भुवन सुंदर श्रीमतान। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपके गुणों को सुन करके अपने आसक्त हो गई और आपके रूप की कथा सुनकर मैं अपने आसक्त हो गई, मेरा मन निर्लज हो चुका है। तो आप इतने महान हैं फिर भी आपको पाने की मेरी लालसा है, आपके गुरुओं ने मुझे बाध्य कर दिया, और यदि आप नहीं आए तो मैं निश्चित आत्महत्या करूंगी। इस तरह का पत्र लिखना कितनी बड़ी बात, और वो भी सेना आ चुकी है, दूसरा दुल्हा बनकर आ चुका था शिशुपाल, इन भगवान के गुणों ने इस तरह पत्र लिखने के लिए विवश कर दिए। तो लिख तो गोपियों ने भगवान के गुण को देख करके, रूप को देख करके, गुण को सुनकर, रूप को देख करके, बांसुरी का स्वर सुन करके, सब कुछ छोड़कर कृष्ण में अनुरक्त हो गए। चार कुमार भगवान के चरण गंध को सुनकर सब कुछ छोड़ दिए, ब्रह्म सुख छोड़कर भगवान में तल्लीन हो गए। सुखदेव गोस्वामी उसके अद्भुत प्रमाण है। वृंदावन की गौएं, वृक्ष, लता, कोई भी व्यक्ति ऐसा गुण है। अच्छा, जब इथम भूत गुण हरि ही, भगवान ऐसे गुण वाले है ही, तो निश्चित यह सिद्धांत यहाँ आ गया कि जो व्यक्ति भगवान के गुणों को कहेगा, प्रसारित करेगा, उससे बढ़ करके भगवान का प्रिय कोई नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता है कि लोगों को बताया जो लोग कृष्ण के विषय में जानते नहीं। कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि और लोग जैसे अन्य लोगों को भगवान कह दिया जाता है, वैसे भगवान कृष्ण को भी कह दिया गया। और ऐसे भी कहते आप लोग तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो दूसरे थे। ये समझते नहीं। इसलिए भगवान के गुणों के वर्णन की आवश्यकता है। इस सप्ताह में खूब अच्छी तरह से भगवान के गुणों का वर्णन किया जाएगा। वर्णन करने वाले देखिए कौन कौन लोग हैं, गिना रहा। सुध गोस्वामी तो कहते ही जा रहे हैं, सबकी बातों को वो अपनी बात में कहेंगे, कभी कभी अपना अपनी तरफ से बोलते हैं भगवान के विषय में। अर्जुन के मुख से सबसे पहले भगवान के गुणों का वर्णन, सातवें अध्याय। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा तो उस समय कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए उनकी शरण ले रहे हैं 5 श्लोक में। तो अर्जुन सबसे पहले वक्ता है कृष्ण के गुण के इस प्रसंग में। इसके बाद उनकी माँ है, अर्जुन की माँ, अर्जुन जैसे महान भागवत भागवत परिकर भगवत पार्षद की माँ बहुत अनुभवी महिला थी, बहुत बड़ा बड़ा राजनीति का चक्र उसने देखा था। वैसे राजर्षि की पत्नी थी जो अस्मय में विधवा हो गई और उसके बच्चों को मारने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, लेकिन भगवान कृष्ण अद्भुत स्नेह किए उससे, अपनी माता से भी बढ़कर। तो उसने अपने जीवन का अनुभव दिया है, और जीवन का अनुभव मतलब कृष्ण के विषय में उसने अपना मत दिया, कृष्ण आप क्या है, ऐसे सामने बात कर रही है, आप क्यों अवतार लेते हैं, आपकी ये लीला क्यों लीला, तुलना भी करते हैं कि देवकी आपकी माँ है, मैं आपकी बुआ हूँ, लेकिन आपने अपनी माँ से भी ज्यादा स्नेह मुझे दिया है, अधिक उपकार किया। तो कृष्ण तत्व को खूब भली भांति परखा कुंती महारानी ने, उनके पुत्रों के साथ बहुत निकट का संबंध था, और जिनके पिताजी भाई थे कुंती के, कृष्ण के साथ क्या संबंध बाकी रहा है, बहुत निकट से समझे थे। जिस दिन कृष्ण उखल में बांधे गए थे उस दिन कुंती नंद महाराज के यहाँ गई थी मथुरा से, उसने आंख से इस लीला को देखा था, इसलिए उस लीला की चर्चा अपनी स्तुति में कर रही है। जिस समय गोपी जशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाया था उसने आपकी क्या दशा हो गई थी, मैं तो बहुत भ्रम में पड़ जाती हूँ कि एक बार इस विश्व युद्ध के आप नायक बने, इतने इतने बड़े बड़े महारथियों के महान अस्त्रों से हमारे पुत्रों की रक्षा की, और उस समय रस्सी उठाते ही आप इतना भयभीत होकर रो रहे थे, निश्चित ही वह आपका नाटक नहीं था, वास्तव में आप रो रहे थे। तो उस लीला को और ऐश्वर्य की लीला को कुंती महारानी देखी थी, ब्रह्मास्त्र किस तरह आए थे आकाश में और कृष्ण ने किस तरह पांचों ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भ में भी जाकर नष्ट किया, कुंती महारानी पूरा इस बात को समझ रही थी, तो उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद द्वादश भागवतों में से महाभागवत भीष्म पितामह अपना अनुभव कृष्ण के विषय में व्यक्त करेंगे, और उनका अनुभव समस्त राजर्षि ब्रह्मर्षि आदि की सभा में हुआ था, सब लोग जुटे थे, सुखदेव गोस्वामी भी वहां जाकर सुन रहे थे, भगवान परशुराम जी आए थे, नारद जी, वेदव्यास जी, धौम, ये सब ऋषि मुनि आए थे, सर्वे शब्द का प्रयोग करते हैं शुद्ध गोस्म, सभी ऋषि मुनि आए। तो ऋषि मुनियों की सभा में कुरुक्षेत्र की भूमि में भीष्म पितामह कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, डायरेक्ट कृष्ण के सामने उन्होंने अपने जीवन का अनुभव दिया। और इसके बाद फिर शुद्ध गोस्म बोलते हैं, इसके बाद है हस्तिनापुर की नारियों का कृष्ण के विषय में मंतव्य, और वे छतों पर चढ़कर राजपथ पर चलने वाले कृष्ण को अंगुली से दिखा दिखा कर कहते, जानती हो सखी ये कौन पुरुष है, ये कौन है तुम जानती हो, कृष्ण के तेज और सौंदर्य से और सब स्त्रियां चकित थी, बहुत चकित थी, इसलिए उसका समाधान करते हुए अन्य नारियां बोलते हैं, जानती हो सखी ये कौन है, ये हैं साक्षात भगवान। स्त्रियों ने निश्चित ही कई जन्मों तक तप किया होगा, व्रत किया होगा, दान किया होगा, तीर्थों में स्नान किया होगा, जिनके साथ इस पुरुष ने पाणी ग्रहण किया, और वास्तव में सबसे सौभाग्यवती कोई सौभाग्यशाली कोई जीव है तो भगवान की पत्नियां हैं, वो कृष्ण की सेवा करने का उनको पूरा पूरा अवसर है, वो कंघी करती हैं, कृष्ण को पंखा डुलाती हैं, चरण दबाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो इससे बड़ा स्वभाव क्या हो सकता है। तो नारी होने से उनके हृदय में यह पश्चाताप हो रहा है कि हमें क्यों नहीं विधाता ने सौभाग्य दिया, इस तरह भगवान सुंदर है। तो उनके मुख से वर्णन, इसके बाद द्वारिका के लोगों के मुख से कृष्ण वर्णन आएगा। तरसुद गोस्वामी अंत में अपना फाइनल कंक्लूजन दिए हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को स्त्रैण समझते हैं वे कितने माया में हैं। इस सिद्धांत को वे कहे अंत में और भगवान की लीला का द्वारिका में पत्नियों के साथ जो लीला है उसका संक्षेप में वर्णन किए। ये सब प्रसंग आएंगे भगवान के ये गुण, ऐसे तो पूरा भागवत भरा पड़ा है, समर्थ नहीं है किसी कहने की और न सुनने की, लेकिन फिर भी जितना भी श्रवण कीर्तन किया जाए उतना ही पूर्ण है, अपने आप में वह अपूर्ण है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने बंधु बांधवों को लाइए, समय तो एक एक मिनट बीत रहा है, भगवान कृष्ण के विषय में बड़े बड़े लोगों का अनुभव सुन लिया जाए। यदि हम लोग भीष्म पितामह के मुख से सुने, माता कुंती के मुख से सुन लेंगे, तो आजकल के दुष्टों के मुख से कृष्ण के विषय में कोई बात निकलेगा तो हमारे मन को कोई उसका भैलू नहीं रहेगा। कृष्ण के विषय में आजकल भी लोग बोला करते हैं। एक महाखल ने, महादुष्ट ने एक ग्रंथ लिखा है श्री कृष्ण की आत्मकथा, आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा, लिखने वाला भी वो बिहारी बोका है, बिहार का है। तो वो लिखा है कई बात, मतलब कृष्ण स्वयं बोल रहे शुरू से अंत तक, मैं ऐसे मथुरा में जन्म लिया, मेरे सामने ये परिस्थिति थी, ये था वो था, ऐसे किया वैसे किया ये किया, उसके मन में जो आ रहा है वही कृष्ण के मुख से बोलता जा रहा है। मैं डालमिया नगर देहरी अनशन गया था तो एक व्यक्ति ला करके हमको दिया कि स्वामी जी आप ये पढ़े हैं किताब, देखा कौन किताब है तो कृष्ण की आत्मकथा है, कृष्ण तो आत्मकथा गीता के रूप में किए है, तो अपनी कथा भगवान गीता के रूप में बोल रहे हैं इसकी क्या जरूरत, नहीं आप इसको पढ़िए तो। वो कहने लगा इसको आप पढ़िए तो, मैं कहा मैं देखना नहीं चाहता, पढ़ने की बात तो दूर है, फिर भी अच्छा दीजिए देखता हूँ। मैं देखा केवल एक पैसेज, मुझे बहुत घृणा है, मैं झटक कर किताब फेंक दिया, कहा इसको लिखा कौन, कृष्ण लिखा कि कोई दूसरा लिखा है, दूसरा व्यक्ति कृष्ण बनकर लिख रहा है ना, उसको लिखना चाहिए था मेरी आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा नहीं। कृष्ण के विषय में बड़े बड़े लोगों ने कहा है और श्रीमद् भागवत में सबका प्रवचन रखा गया है, कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है और भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, वसुदेव जी बोले हैं, माता देवकी बोली है, गोपियों ने कहा है, सखाओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, इंद्र ने कहा है, मुस्कुंद महाराज ने कहा है, बहुत लोगों ने कृष्ण के विषय में प्रवचन किया है, बहुत पर्याप्त है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उसे ग्रहण करें, स्वयं भक्ति में दृढ़ होने के लिए और दूसरों को भी भक्त बनाने के लिए कृष्ण के इन गुणों का श्रवण बहुत आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए, लेकिन और अधिक धन्यवाद दूंगा यदि आप रेगुलर आते रहे। भगवान विट्ठल की शरण में हम लोग हैं। ये रखू माई का नाम रुक्मिणी जी का अर्थ है क्या है, कि दूसरी कोई थी रुक्मिणी जी ने, तो श्री श्री विठल और रुक्मिणी जी की शरण में हम लोग हैं, उन्हीं की कथा चल रही है। बहुत सुंदर स्थान है, इस स्थान पर इस तरह की कथा बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, जो सुंदरता है वास्तव में। तो फिर दूसरी सिटी में आप राइट टाइम आएंगे इसकी अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।